हरे कृष्णा।
तो कल की छुट्टी कैसी रही?
सबने बहुत पढ़ाई की किया? कितने भक्तों ने पढ़ाई किया है रविवार के दिन? बस दो ही हाथ ऊपर, दो या तीन। फिर रविवार कैसे बिताया? पढ़ाया नहीं तो सुबह क्लास तो भागवत क्लास ना, गीता क्लास हुई रविवार में, नहीं था ना शेड्यूल में तो नहीं था, एक्स्ट्रा क्लास लिया। अच्छा ऐसे अच्छा 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 है, मतलब माया के लिए कोई स्थान नहीं, कोई प्रवेश करने के लिए जगह नहीं माया के लिए। भक्त ऐसे हो जबकि रात को सोने चले जाए तो बस 15 सेकंड में नींद आ जाए, कोई बिल्कुल समस्या नहीं, क्योंकि दिन में इतनी सेवा कर करके थक जाए तो दिन रात को आराम से नींद आ जाए।
मुक्ति से बढ़कर भक्ति, तो इसमें हम कहां थे? हनुमान जी है ना, हरि शीर्ष पंचरात्र में प्रहलाद महाराज के बारे में बताया गया कि उन्होंने नरसिंह देव भगवान से कोई वरदान नहीं मांगा। वो कौन सी किताब है वो वाली? केवल श्लोक, केवल श्लोक ना, टीका नहीं है। है शीर्ष पंचरात्र।
और फिर पिछली बार आप पूछ रहे थे आपको हनुमान जी का, हनुमान जी के बारे में वो श्लोक चाहिए था,
मतलब हनुमान जी ने कहा हुआ श्लोक, उनकी प्रार्थना, तो यही है वो श्लोक। बंधा नहीं, बंध केवल, हाँ ठीक है, बंध छिदे। भव बंध छिदे तस्यै स्पृहयामि, होना चाहिए आधा स, स्पृह्यामि न मुक्तये भवान् प्रभुरहं दास, भवान् प्रभुरहं दास इति विलुप्यते। भव बंध छिदे तस्से, हम भव के बारे में सुन चुके हैं ना, इति यत्र होना चाहिए, एक शब्द मिसिंग है इसमें, हम सोच रहे कैसे गड़बड़ हो गया, देखिए यत्र होना चाहिए ना, इति यत्र विलुप्यते, यत्र है, यत्र है ना, कोई बात आप लिख लीजिए, इति और विलुप्यते के बीच में यत्र, वैसे इसको कंटेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है, केवल ये बताने के लिए। नहीं लिखा है क्या? तो मिस हो गया होगा। इति यत्र विलुप्यते, तो भव बंध, भव बंध, बंध क्या है, हम भव के बारे में चर्चा कर चुके हैं ना, भव क्या चीज है? संसार, इस संसार को भव कहते हैं, तो भव संसार का क्या बंधन होता है ना, तो ये भव बंध छिदे, छिदे मतलब फाड़ देना, इसको चूर चूर कर देना। तस्यै स्पृह्यामि न मुक्तये, मुझे इस संसार के भवबंधन से मुक्ति नहीं चाहिए, मोक्ष नहीं चाहता हूं मैं। भवान प्रभुर अहम दास इति यत्र विलुप्यते, क्यों मैं नहीं चाहता मोक्ष,
क्योंकि भवान, भवान मतलब आपका,
प्रभुर,
आप प्रभु हैं और अहम दास और मैं दास हूं, ये भावना नष्ट हो जाएगी, इसलिए मैं मोक्ष नहीं चाहता। है ना बड़ी सुंदर बात। तो हनुमान जी कहते हैं मैं मोक्ष की कामना भी नहीं करता, क्योंकि मोक्ष प्राप्त करने के बाद क्या होगा, आत्मा निराकार ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाएगा। जब लीन हो जाएगा तो फिर दासत्व की भावना रहेगी नहीं, फिर दास अपने प्रभु की सेवा कैसे कर पाएगा, क्योंकि ये सेवा का मौका नहीं रह जाएगा, इसलिए मैं ये मोक्ष नहीं चाहता। इसलिए भक्त सायुज्य मुक्ति तो किसी भी हालत में नहीं चाहते, क्योंकि सायुज्य मुक्ति में सेवा का अवसर नहीं रहता है। तो ये है हनुमान जी की प्रार्थना। नहीं, ये वाल्मीकि रामायण से जो था वो हमने अलग से सुनाया था, वो अलग है। ये रूप गोस्वामी ने कहा नहीं है कि कहां से है, ऐसे कहा गया कि हनुमान जी ने, हनुमान जी का एक प्रसिद्ध श्लोक है कि हनुमान जी का कहा हुआ श्लोक कौन से शास्त्र का है, उन्होंने ऐसे स्पष्ट बताया नहीं है। वो हनुमान रामायण का श्लोक है, वो हमने अलग से कहा था, बताया था उसके लिए। दासोहम कौसलेन्द्रस्य रामस्य क्लिष्ट कर्मणः। दासोहम, दास अहम, मैं दास हूं किनका, कौसलेन्द्र अस्य मतलब उनका, किनका, कौसल राज्य के राजा का, जिनका नाम क्या है, राम। तो रामस्य मतलब राम का दास हूं मैं, और राम का वर्णन कैसे करते हैं हनुमान जी, अक्लिष्ट कर्मणः। क्लिष्ट मतलब थक जाना, अक्लिष्ट मतलब जो कभी थकते नहीं है अपने कार्यों में, कर्मणः। मैं उन कौशल राज श्री रामचंद्र का दास हूं जो कभी भी अपने कार्यों में थकते नहीं है। इसलिए वो चेतावनी देना चाहते थे रावण को, ऐसे नहीं सोचना कि आपकी बड़ी सेना से वो डरेंगे, एक बार युद्ध करना शुरू करेंगे तो समाप्त नहीं करेंगे जब तक कि आपका वध न हो जाए, इसलिए सावधान। अच्छा ठीक है, तो अगला श्लोक जरा। अच्छा आगे चर्चा करते हैं, और फिर आगे नारद पंचरात्र में इसी प्रकार की एक प्रार्थना है। भक्त प्रार्थना करते हैं, कोई पढ़िएगा जरा नारद पंचरात्र में क्या लिखा है।
हे प्रभु, मैं धार्मिक अनुष्ठान या अर्थ काम अथवा मोक्ष के द्वारा किसी सिद्धावस्था का भोक्ता नहीं हूँ। मेरी तो आपसे इतनी ही विनती है कि आप मुझे अपने चरण कमलों की छाया में रहने दें। मुझे सारुप्य आपके लोक निवास या सारुप्य आप जैसा स्वरूप जैसी कोई मुक्ति नहीं चाहिए। मुझे तो इतना ही अनुग्रह चाहिए कि मैं आपकी प्रेमा भक्ति में सदैव लगा रहूं।
बस, तो भक्त की प्रार्थना क्या है, क्या चाहिए उनको, क्या नहीं चाहिए वो बता दिया है, लेकिन क्या चाहिए वो भी तो बताया है ना, क्या चाहिए उनको,
केवल उनकी प्रेमा भक्ति चाहिए। क्या फिर सालोक्य, सालोक्य और भगवान के लोक में जाकर के भगवान की सेवा नहीं करेंगे, करेंगे ना, तो फिर ऐसे क्यों बताया कि मुझे ये भी नहीं चाहिए वो भी नहीं चाहिए, केवल आपकी प्रेमा भक्ति चाहिए, आपकी सेवा चाहिए, क्यों? क्योंकि अगर ऐसे मुक्ति आपके सेवा विहीन हो तो ऐसी मुक्ति मुझे नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कि भक्त भगवान के साथ नहीं रहना चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि भगवान के लोक में नहीं जाना चाहते, भगवान के समीप नहीं होना चाहते, ऐसा नहीं है। परंतु ऐसे भगवान के समीप होना तब वो पसंद नहीं करते जबकि उसमें सेवा का मौका न हो।
और अगर भगवान का सानिध्य न प्राप्त करते हुए भी बहुत दूर शारीरिक दृष्टि से दूर रहकर भगवान की सेवा अच्छी तरह से हो तो वो चाहते हैं भक्त। तो भक्तों के लिए सेवा महत्वपूर्ण है, अनुकूल भाव, और न कि अपने सुख के लिए भगवान के धाम में जाना, भौतिक बंधन के दुखों को त्याग कर दिव्य आनंद की प्राप्ति करना, वह भी एक प्रकार का स्वार्थ हो जाता है ना, कि अपना सुख हम चाहते हैं, हम थक गए हैं भौतिक जगत से, ये बारंबार जन्म मृत्यु वगैरह से।
अच्छा, आगे फिर श्रीमद् भागवत के छठे स्कंद में परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को बताते हैं, बताइएगा, अरे पढ़िएगा, क्या कहते हैं महाराज परीक्षित सुखदेव गोस्वामी से, क्या प्रश्न करते हैं।
ब्राह्मण, मेरे विचार से वृत्रासुर अत्यंत पापी था और उसकी मनोवृत्ति नितांत रजोगुणी तथा तमोगुणी थी।
क्यों?
क्योंकि वो असुर है। असुर वो है तो होते हैं जिनका
जो विशेष करके रजोगुण तमोगुण दोनों के प्रभाव में होते हैं। अच्छा, ये बताइए असुर और राक्षस में अंतर क्या है, है या नहीं है, क्या है?
असुर असुर भगवान को जानते हैं और भगवान से भगवान के ऐश्वर्य को जानते हैं और इसीलिए उनसे विरोधाभास करते हैं, क्योंकि तो राक्षस तो पूरी तरह से भगवान को भी नहीं मानते हैं। और
ऐसा नहीं, गीता में जो परिभाषा दी गई असुरों की वो क्या है, वो भी नहीं मानते हैं। गुणों के हिसाब से बताइए, तीन गुणों के हिसाब से बताइए। ये सही है, असुरों में रजगुण और तमगुण होता है, तमगुण का मिश्रण होता है, और राक्षस पूरे तमोगुण में, शुद्ध तमोगुण। शुद्ध तो कोई भी गुण नहीं होता इस भौतिक जगत में, परंतु प्राधान्य तमोगुण का है। असुरों में रजोगुण और तमोगुण का मिश्रण होता है, और सतगुण में कौन है? सुर, देवतागण। देवता हैं वो सत्वगुण में, असुर रज और तम में, और राक्षस तमो में,
ठीक है। तो इसलिए वो कह रहे हैं वृत्रासुर ये तो असुर हैं, और असुर तो वैसे रज और तमो के प्रभाव में होते हैं।
हाँ, तो फिर आगे क्या प्रश्न है उनका?
तो फिर उसने नारायण की इतनी पूर्ण भक्ति कैसे विकसित की? मैंने सुना है कि बड़े बड़े तपस्वी तथा ज्ञानी व्यक्ति भी बड़े प्रयत्न से भगवान के भक्त बन पाते हैं। ऐसे व्यक्ति दुर्लभ होते हैं और प्रायः देखने में नहीं आते, अतः मैं आश्चर्यचकित हूँ कि वृत्रासुर ऐसा भक्त किस तरह होगा।
वैसे तो हम कल्पना कर सकते हैं कि जो सतगुणी आदमी है, शांत वृत्ति का है, वही भगवान का भजन करके भगवान को प्राप्त कर सकता है। लेकिन यहां हम देखते हैं कि एक और बहुत बड़े बड़े ज्ञानी योगी आदि इत्यादि बहुत तपस्या करते हैं, ज्ञान अर्जन करते हैं, फिर भी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते, और करते भी हैं तो बड़े कठिनाई से। और इधर हम देख रहे हैं कि वृत्रासुर जैसा असुर, उसके हृदय में भगवान के प्रति इतनी श्रद्धा कैसे उत्पन्न हो गई?
ये एक रहस्य है कि वृत्रासुर भक्त कैसे बना, ये प्रश्न है।
तो इससे हम क्या सीख सकते हैं? जो इस संदर्भ में जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि जो मुक्त पुरुष हैं वो भी भगवान की भक्ति को नहीं प्राप्त कर सकते हैं, हालांकि वो ब्रह्मभूत अवस्था में स्थित हैं, और यहां एक असुर है, क्योंकि उसकी श्रद्धा थी, वो सही भावना थी, तो भक्ति कर पाया। इससे साबित ये होता है कि भक्ति मुक्ति से भी कहीं ज्यादा श्रेष्ठ है,
और इसलिए आगे इसका तात्पर्य दे रहे हैं प्रभुपाद जी, पढ़िएगा।
ऊपर युक्त श्लोक की सबसे महत्वपूर्ण ध्यान देने योग्य बात यह है कि भले ही ऐसे अनेक मुक्त पुरुष हो जो निराकार धर्म से तदाकार हो चुके हों, किंतु भगवान नारायण का भक्त अत्यंत दुर्लभ होता है। लाखों मुक्त व्यक्तियों में से भी एक कोई एक बिरला भगवत भक्त होता है।
तो ये जो एक चार पांच लाइन है ना, इस ये वास्तव में भागवत का श्लोक है जिसका अनुवाद प्रभुपाद जी यहाँ पे इस पैराग्राफ में कर रहे हैं। और वो कौन सा श्लोक है? ये वाला ऊपर। आपने सुना है कभी श्लोक? ऐसे प्रसिद्ध श्लोक है, मुक्तानामपि सिद्धानाम नारायण परायणः सुदुर्लभः प्रशांतात्मा कोटिष्वपि महामुने। मुक्ता नाम मतलब मुक्तों में से, मुक्तों में अपि और सिद्धा नाम सिद्ध लोगों में नारायण परायण है। नारायण परायण मतलब क्या है? जो नारायण जो कृष्ण भक्त हैं, सुदुर्लभ है, ऐसे मुक्त लोगों में और ऐसे सिद्ध लोगों में एक नारायण के भक्त को पाना क्या है? सुदुर्लभ। केवल दुर्लभ नहीं, सुदुर्लभ। सुदुर्लभ मतलब अति दुर्लभ। यहां जो सु का प्रयोग किया गया है इसका मतलब है अति, अति दुर्लभ है। और ऐसे नारायण परायण भक्तों का गुण क्या होता है? प्रशांत आत्मा, प्रकृष्ट रूपेण शांत, बिल्कुल शांत चित्त के होते हैं। कोटिश्व कोटिशु अपि महामुने, कि हे महामुने, ऐसे कोटि कोटि मुक्त पुरुष और सिद्ध पुरुषों में से विरला ही कोई एक कृष्ण भक्त आपको मिलेगा। तो ये महत्वपूर्ण श्लोक है ना, कि भक्त कितने दुर्लभ होते हैं। इसलिए हमें हर एक भक्त को प्रोत्साहन देना चाहिए भक्ति में टिके रहने के लिए, भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। जब कोई भक्त भक्ति का पथ छोड़ के जाने के लक्षण दिखा रहा है तो बड़े प्रेम से, बड़े ही ध्यान से उसे वापस ले आने की चेष्टा करनी चाहिए, क्योंकि इतने दुर्लभ है वैसे भक्त। ठीक है, ये श्लोक हम क्यों आपको बता रहे हैं भाई बार बार, हालांकि इसमें श्लोक लिखे नहीं, केवल श्लोकों का अनुवाद लिखा है, तो संस्कृत श्लोक क्यों हम बार बार पढ़ रहे हैं, शब्दार्थ उनका बता रहे हैं, क्या कारण है? श्लोकों को समझने की, सीखने की आदत पड़नी चाहिए, श्लोकों का विश्लेषण करने का अभ्यास हो जाना चाहिए और ये सब पढ़ के थोड़ा रस आ जाना चाहिए। इसलिए एक तरह का प्रैक्टिस अभ्यास हो रहा है बार बार ऐसे पढ़ के, फिर अगली बार आप श्लोक पढ़ेंगे तो आपको समझने में उतना उतनी कठिनाई नहीं होगी, आप खुद समझ पाएंगे। हाँ, मुक्ता नाम सिद्धा नाम, हाँ, फिर सुदुर्लभ, नारायण परायण सुदुर्लभ है ना, आसान है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, साधारण अर्थ तो आप समझ पाएंगे। ठीक है, अच्छा फिर आगे कुंती महारानी की प्रार्थना का प्रमाण देते हैं श्रील रूप गोस्वामी। अच्छा, कोई अगला श्लोक लगाएंगे ऊपर
और कोई पढ़ेंगे फिर कुंती महारानी की प्रार्थना के बारे में क्या कह रहे हैं रूप गोस्वामी पाद।
कुंती महारानी की प्रार्थनाओं को आप सबने पढ़ा है? कितने भक्तों ने पढ़ा है कुंती महारानी की प्रार्थनाओं को? बहुत ही सुंदर प्रार्थनाएं हैं। वैसे जैसे ही आपकी भक्ति शास्त्री समाप्त हो जाएगी ना, तो ये पहली चीज है, आप पढ़ लीजिए।
भागवत के कुंती महारानी की प्रार्थनाएं बहुत ही अनुसरणीय हैं, प्रेरणादायक हैं, उससे बहुत हमें अच्छे अच्छे उपदेश मिलेंगे। तो इसमें ये एक श्लोक है, तथा परमहंसानां मुनि नाम मलात्मनाम भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्ये मही स्त्रियः। परमहंसानाम मुनि नाम अमलात्मनाम, तीन श्रेणी है लोगों के जिनका वर्णन उन्होंने किया है। इन परमहंस कौन होते हैं? परमहंस शब्द का अर्थ क्या है?
बहुत बड़े बड़े भक्त हैं जो आश्रम में परमहंसों की संहिता है जिसको
जो पदार्थ में फर्क करना
जानते, जो पदार्थ में फर्क करना जानते हैं, जो जिनकी विवेक बुद्धि इतनी तीव्र है कि वो शाश्वत और अशाश्वत, सत्य और मिथ्या का भेद करने में सक्षम हैं, ऐसे लोगों को परमहंस कहते हैं। तो ऐसा क्यों कहा गया? हंस शब्द का क्या तात्पर्य है, इसमें क्या महत्व है? दूध और पानी को अलग करता है, और क्या स्वीकार करता है? दूध या पानी अलग करके? दूध। तो केवल अलग करना इतना काफी नहीं है, अलग करने के बाद कौन सा पदार्थ को स्वीकार करता है वो भी जरूरी है ना। और इसके विपरीत है कौवा। कौवा क्या करता है? वो भी भेदभाव करता है, वो भी विवेक करता है, अच्छे और बुरी चीजों का भेद करता है। भेद करने के बाद क्या स्वीकार क्या करता है? बुरी गंदी चीज को स्वीकार करता है ना। तद वायसम तीर्थम उशंति मानस है, श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि जो विषय भौतिक है जिनका कोई संबंध भगवान से नहीं है वो कौवों की तीर्थ स्थान के बराबर है। तीर्थ स्थानों में लोग जाते हैं ना जो बड़े श्रद्धा पूर्वक जाते हैं, तो कौवे कहाँ जाते हैं? कौवे को आप एक अच्छे से बगीचे में देखिए, बहुत सुंदर बगीचा वगैरह, वो बगीचे में ढूंढने का गंदगी कहाँ है ना। वो ये नहीं देखेगा कि इतना सौंदर्य है यहाँ, इतना रमणीय वातावरण है, वो नहीं देखेगा। कोने में कहीं कहीं छोटा सा कुछ उसको मिल गया, कोई छोटी सी गंदगी एक स्थान मिल गया कोई, वहां चले जाएगा और उसमें रमण करना शुरू कर देगा। यह है कौवा। हालांकि इतना इतनी अच्छी अच्छी चीजें हैं, भेद करेगा ये अच्छा है ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है उसको स्वीकार करेगा। इसका मतलब है ये भौतिकवादी लोग हैं जो दुनिया में से केवल अयोग्य चीजें, जो स्वीकार करने योग्य नहीं है, ऐसे चीजों को स्वीकार करते हैं जीवन में। और जो परमहंस होते हैं वो क्या करते हैं? वो दुनिया से संसार से केवल उन चीजों को स्वीकार करते हैं जो उनके आध्यात्मिक जीवन के लिए लाभदायक हो सकते हैं। तो वो ऐसे हैं जो कि दूध और पानी का मिश्रण का भेद करके दूध को स्वीकार करते हैं। परमहंसानाम मुनि नाम, मुनि मतलब जो बहुत ही दार्शनिक चिंतन करने में सक्षम है, ऐसे लोग को मुनि कहते हैं। ऐसे कहा जाता है कि दो मुनि में कभी भी समान मत नहीं होगा किसी भी विषय के ऊपर। मुनि मतलब मतभेद होना चाहिए, कोई अपना मत रखेगा कि मेरे अनुमान में सृष्टि का सृजन ऐसे ऐसे हुआ, कोई कहे नहीं नहीं सृष्टि का सृजन वास्तव में ऐसे हुआ। मुनि मतलब हरेक मुनि बहुत बुद्धिमान होते हैं, ये लोग अपना अपना मत निकालते हैं और मत प्रस्तुत करते हैं, और उनके पहले जिन मुनियों ने कुछ मत रखा था उनका खंडन करते हैं। और जब तक आपका मत नया नहीं होगा, आप पूर्व स्थापित किए हुए सिद्धांतों का खंडन नहीं करेंगे, तो आपको अच्छा मुनि नहीं माना जाएगा। तो आधुनिक काल के मुनि कौन है बताइए? साइंटिस्ट, वैज्ञानिक, आधुनिक काल के मुनि। तो मुनि आजकल के वैज्ञानिक तो बिल्कुल ही नहीं मानते, और जो पुराने जमाने के मुनि हैं, अलग अलग तरह के मुनि हैं। एक तो वैष्णव मुनि हैं, जैसे नारद मुनि, ऐसे मुनि तो बहुत ही श्रेष्ठ माने जाते हैं। परंतु अन्य हैं, जैसे चार्वक मुनि, चार्वक मुनि वो भी एक मुनि थे, लेकिन चार्वक मुनि का सिद्धांत क्या था? हाँ, क्या पूरा श्लोक कौन जानते हैं? ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत यावत जीवेत सुखम जीवेत भस्मी भूतस्य। फिर से बोलो, देहस्य किम पुनरागमनो भवेत। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत यावत जीवेत सुखम जीवेत भस्मी भूतस्य देहस्य किम पुनरागमनो भवेत। वो भी एक मुनि है, उन्होंने भौतिक सृष्टि का बहुत गहराई से विश्लेषण किया है, और विश्लेषण करके किस नतीजे पर पहुंचे हैं कि कौन है, कहां है भगवान, किसने देखा है आत्मा को, क्या है ये पुनर्जन्म और पूर्व जन्म, छोड़ो इन बातों को, ये आत्मा शरीर भगवान ये सब छोड़ दो, क्या है संसार का उद्देश्य, ऐश करो, भोग करो। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, घृत मतलब घी। तो वैदिक काल में ऐश्वर्य का लक्षण है घी, मतलब घी में पकाया हुआ भोजन खाना। उस समय तो डालडा, पोस्टमैन ये सब तो नहीं था ना, तो बिल्कुल शुद्ध घी में, दूध के, गाय के दूध के बनाए हुए घी में सब पकाते थे। तो ऐश्वर्यशाली जीवन का प्रतीक है घी। तो अगर कोई ऐश से जी रहा है, मतलब घी का पकाया हुआ भोजन खा रहा है। एक बार प्रभुपाद जी हैदराबाद में गए थे, तो वहां उनसे मिलने एक व्यक्ति आए जिनका नाम था पुला रेड्डी, और उनका एक, वो हलवाई थे, उनका मिठाई का दुकान था। तो उन्होंने अपने मिठाई का नाम, मिठाई की दुकान का नाम रखा था जी पुला रेड्डी स्वीट्स। तो प्रभुपाद जी ने देखा और कहा कि नहीं, ये नाम को बदलिए, कहिए जी पुला रेड्डी प्योर घी स्वीट्स। शुद्ध घी तो होना चाहिए, प्योर घी लगाइए इसमें, फिर लोग समझेंगे कि हाँ इस मिठाइयों में कुछ है। तो वो कहते हैं घी का बनाया वो खाओ, खूब मौज करो, खूब ऐश करो। अगर आप कहेंगे कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है सब करने के लिए, अरे कोई बात नहीं, चोरी करो, ऋण ले लो, कुछ भी करो, लेकिन खाओ पियो, मौज करो। ये है चार्वक मुनि का सिद्धांत। ऋणम कृत्वा, ऋण भी ले लो, परंतु ऐश्वर्यशाली जीवन जियो। यावत जीवेत सुखम जीवेत, जब तक जी रहे हो बड़े सुख से जियो, आराम से ऐश करके जियो। भस्मी भूतस्य देहस्य, जब ये देह भस्म हो जाएगा मृत्यु के समय, किम पुनरागमनो भवेत, किसने देखा है कोई अगला जन्म होगा भी या नहीं, कोई बता सकता है कि अगला जन्म होगा? तो जो होगा है, होना है, वो इसी जन्म में होना है, इसलिए खूब भोग करो। तो मुनियों का मत अलग अलग हो सकता है। तो आजकल जो भोगवाद का सिद्धांत है, ये कोई नया नहीं है, जितने भी सिद्धांत प्रचलित हैं दुनिया में, उनका, उन सब का आविष्कार जो भी है वो पहले से किया हुआ है। बहुत बड़े बड़े बुद्धि वाले मुनि सब आए हैं और गए हैं। नहीं, तो दो प्रकार के मुनि हैं, अलग अलग प्रकार के हैं वास्तव में। उनमें से एक जो वैष्णव मुनि है, उनको श्रेष्ठ माना जाता है। मुनि मतलब जो बहुत गहराई से विश्लेषण कर सकते हैं। तो नारद मुनि भी गहराई से विश्लेषण करके इस सिद्धांत पे पहुंचे हैं कि कृष्ण भक्ति ही सब कुछ है, तो वो श्रेष्ठ मुनि है। तो यहां बता रहे हैं परमहंसानाम, मतलब परमहंसों में, परमहंसों को वास्तव में मुनि नाम और अमलात्मा नाम। अमलात्मा नाम मतलब शुद्ध हृदय के हैं, अमल, मल नहीं है, अमल, अमलात्मा नाम। भक्ति योग विधान अर्थम, अर्थम मतलब हेतु। तो ऐसे परमहंसों को, मुनियों को, अमलात्मनों को आप भक्तियों का उपदेश देने के लिए अवतीर्ण हुए हैं, वो कहना चाह रही है कुंती महारानी।
और कहती हैं कि आप ऐसे भक्तियों को मुक्त पुरुषों को भी दे रहे हैं जिन्होंने मुक्ति प्राप्ति कर ली है, जो जीवन मुक्त हैं, ऐसे लोगों को आप भक्ति का उपदेश देने के लिए आए हैं, तो हम कथम पश्येम ही स्त्रियः, मैं तो एक साधारण स्त्री हूं, मैं क्या मुकाबला कर सकती हूं उन बड़े बड़े परमहंसों की, मुनियों की, अमलात्मनों की, मैं नहीं कर सकती। तो तात्पर्य क्या है इस संदर्भ में? तात्पर्य यह है कि जो मुक्त पुरुष हैं जैसे परमहंस मुनि आदि, ये लोग भी भक्ति चाहते हैं, ये लोग भी भक्ति के स्तर में आए नहीं हैं, अर्थात भक्ति मुक्ति से कहीं श्रेष्ठ है। इसी सिद्धांत को का प्रमाण देने के लिए बार बार ये सारे श्लोक रूप गोस्वामी सामने रख रहे हैं। ठीक है, परमहंस यहाँ केवल भक्तों के लिए नहीं है, यहाँ परमहंस शब्द का विशेष करके अर्थ है जो आध्यात्मिक या आत्म साक्षात्कार के मार्ग में लगे हुए हैं और जिन्होंने भौतिक सृष्टि के भोग आदि को त्याग दिया है, वे केवल आध्यात्मिक चिंतन में लगे हुए हैं, ऐसे लोगों को विशेष संबोधित करता है। और आगे एक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, ये है प्रथम श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के सातवें अध्याय में, और इस श्लोक को कहते हैं आत्माराम श्लोक। कोई श्लोक अगला बताएंगे आप? हा? आप सबने सुना है आत्माराम श्लोक के बारे में? ये शब्द सुना है आपने, आत्माराम श्लोक? कितने भक्तों ने सुना है, हाथ ऊपर कीजिए। आत्माराम श्लोक, हाँ, बहुत प्रसिद्ध श्लोक है। ये श्लोक प्रसिद्ध क्यों हुआ बताइए, विशेष करके हमारे संप्रदाय में? चैतन्य महाप्रभु ने किनको सुनाया? सार्वभौम भट्टाचार्य को। और उन्होंने इस श्लोक का अर्थ कितने तरह से किया? 64 तरीकों से उन्होंने सार्वभौम भट्टाचार्य को आत्माराम श्लोक का वर्णन का अर्थ बताया। 64 बार, हाँ, उन्होंने सार्वभौम भट्टाचार्य को कई बार बताया। और जब सनातन गोस्वामी ने उनसे पूछा एक बार कि मुझे आत्माराम श्लोक का वर्णन कीजिए जो आपने सार्वभौम भट्टाचार्य को बताया था, तो उन्होंने कहा कि मुझे क्या पता, मैं तो एक पागल जैसे मैं बोले जा रहा था, मुझे क्या पता मैंने क्या कहा, लेकिन फिर भी आप पूछ रहे हो तो ठीक है, मैं बोलने का प्रयास करूंगा। और फिर ऐसे उन्होंने 64 जो है अर्थ बताए आत्माराम श्लोक के। और इस आत्माराम श्लोक का सार यही है कि भक्त जो है वो ज्ञानियों से आदि श्रेष्ठ है, और दूसरी बात कि श्री कृष्ण के गुण इतने दिव्य हैं, इतने आकर्षक हैं कि वो ज्ञानियों को, योगियों को, सबको आकर्षित करते हैं, यहां तक कि जो मुक्त पुरुष हैं उनको भी आकर्षित करते हैं, इसलिए भक्ति मुक्ति से श्रेष्ठ है। तो यही सारे इस अध्याय का थीम है, यही बात है, भक्ति मुक्ति से श्रेष्ठ है। आत्मारामाश्च मुनयो निर्ग्रंथा अप्युरुक्रमे कुर्वन्ति हेतु किं भक्तिम्। उत्थ होना चाहिए, हाँ, इत्थं भूत गुणो हरिः। तो आत्मारामाश्च मुनयो, हे मुनिगण, आत्माराम, तो आत्माराम कौन होते हैं? शब्द का विश्लेषण कीजिए। जो आत्मा में रमण करने वाले हैं, और इनके विपरीत कौन होते हैं? जो शरीर में रमण करने वाले हैं। तो आत्माराम वो व्यक्ति हैं जो कि आध्यात्मिक मार्ग में बहुत गंभीरता से आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, तो ऐसे आत्माराम जो हैं वो क्या करते हैं उसका अनुवाद पढ़िए। अब क्या यहाँ प्रभुपाद जी कह रहे हैं आगे पढ़िएगा श्लोक में, तो आपको इसका अनुवाद मिल जाएगा। पढ़िएगा कोई पढ़ेंगे
आत्माराम श्लोक। एक महत्वपूर्ण श्लोक है जिसे आत्माराम श्लोक कहा जाता है। इस श्लोक में कहा गया है कि भौतिक कर्म से पूर्णतया मुक्त लोग भी भगवान कृष्ण के दिव्य गुणों से आकृष्ट हो जाते हैं। इस श्लोक का तात्पर्य यह है कि मुक्त आत्मा को भौतिक भोग की रंच मात्र भी इच्छा नहीं रहती। वह सभी प्रकार की भौतिक इच्छाओं से पूर्णतया मुक्त रहता है, तो भी वह भगवान की लीलाओं को सुनने एवं समझने की इच्छा से बलात् आकृष्ट होता है। अतः हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि भगवान की महिमा तथा उनकी लीलाएं भौतिक नहीं है, अन्यथा आत्माराम कहे जाने वाले मुक्त पुरुष ऐसी लीलाओं के द्वारा आकृष्ट क्यों होते हैं। इस श्लोक की यही विशेष बात है।
तो यहाँ निर्ग्रंथा शब्द का प्रयोग किया गया है। तो निर्ग्रंथा मतलब जो बंधन से मुक्त है। निर्ग्रंथा ग्रंथी, ग्रंथी मतलब गांठ। निर्ग्रंथा मतलब जो गांठ से मुक्त है। ये भौतिक बंधन जो है गांठ के बराबर है, आदमी को बांध के रखता है भौतिक जगत से। निर्ग्रंथा तो इस भौतिक बंधन से मुक्त है ये आत्माराम। उरुक्रम, उरुक्रम कौन है? भगवान। क्यों उनका नाम उरुक्रम है? हाँ, लेकिन क्यों ऐसे कहा गया है? नहीं, वो तो वामन देव से समा त्रिविक्रम है, तीन कदम लेने वाले। यहाँ क्यों है? वही बात, जिनके कार्यकलाप जो है बहुत ही अद्भुत होते हैं। उरुक्रम ये भगवान का नाम है। तो जो आत्मा राम है अपने आप ही संतुष्ट है, अंदर ही अंदर से सेल्फ सेटिस्फाइड, आत्म संतुष्ट है। और जो निर्ग्रंथा जो भौतिक बंधन से मुक्त हो गए हैं, अर्थात जो मुक्त अवस्था में स्थित हैं, वो भी अपि क्या करते हैं? कुर्वन्ति, कुछ करते हैं। क्या करते हैं? अहितुकीं भक्तिम, वो भगवान की अहितु की भक्ति करते हैं। क्यों करते हैं? इत्थं भूत गुणो हरि ही, भगवान के दिव्य गुणों से आकर्षित होते हैं। इत्थं भूत मतलब बहुत ही अद्भुत, बहुत ही आकर्षक, बहुत ही सुंदर। इसका तात्पर्य ये है कि भगवान के गुण इतने आकर्षक और सुंदर हैं कि वो ऐसे मुक्त पुरुषों को भी आकृष्ट करते हैं। और कृष्ण के गुणों से आकृष्ट होना इसका मतलब है भक्ति करना। तो जब मुक्त पुरुष भी भगवान की भक्ति करने में आकृष्ट हो जाते हैं, इसका मतलब है कि भक्ति मुक्ति से श्रेष्ठ होना चाहिए। भक्त लोग कभी मुक्ति नहीं चाहते, लेकिन मुक्त लोग भक्ति चाहते हैं। इसका क्या मतलब हुआ?
कि भक्ति मुक्ति से श्रेष्ठ
श्रेष्ठ है, भक्ति ही श्रेष्ठ है। इसलिए यहाँ प्रभुपाद जी कह रहे हैं, इससे हम समझ सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के गुण आदि और लीला वगैरह ये भौतिक नहीं है, अन्यथा क्या
मुक्तात्मा
मतलब जो ब्रह्मभूत अवस्था में स्थित है, मतलब जिन्होंने जान लिया है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, जो अलग अलग आत्म साक्षात्कार की विधियों को स्वीकार करके, मार्गों को स्वीकार करके इस स्तर तक पहुंचे हैं, जो भक्त नहीं है, योग मार्ग से, ज्ञान मार्ग से आदि, वो पहुंचे हैं इस स्तर पे। इस बात के साक्षात्कार या जानकारी उनको हुई है कि मैं आत्मा हूं, मैं आध्यात्मिक हूं, अहम ब्रह्मास्मि, ये साक्षात्कार हो गया। परंतु भगवान श्री कृष्ण के साथ उनका संबंध अभी तक स्थापित नहीं हुआ, जब तक कि वो भक्ति नहीं करेंगे। ठीक है, नित्य मुक्त अलग है। नित्य मुक्त वो केवल जो भगवान के धाम में रहते हैं, नित्य सिद्ध कहते हैं उनको। नित्य सिद्ध और नित्य बद्ध। जो भगवान के धाम में रहने वाले जीव हैं वो नित्य मुक्त कहलाते हैं, नित्य सिद्ध, क्योंकि वो हमेशा ही वो मुक्त अवस्था में रहे हैं, कभी बंधन में पड़े ही नहीं है। और इस भौतिक जगत में तो बद्ध जीव जो हैं उनको नित्य बद्ध कहा जाता है। यहां नित्य का, नित्य शब्द का तात्पर्य है कि अनादि काल से, अर्थात इतने लंबे समय से कि कोई इसकी गणना नहीं कर सकता। कितने करोड़ों जन्म हमने बिताए होंगे इस भौतिक जगत में कोई कह नहीं सकता, इसलिए उनको नित्य बद्ध कहते हैं। भक्त लोग तो मुक्त हैं ही, लेकिन ऐसे भी लोग मुक्त हो सकते हैं जो भक्त नहीं है, लेकिन उनकी मुक्ति और भक्तों की मुक्ति में अंतर है। भक्तों की मुक्ति क्या है कि वो अपना स्वरूप में स्थित हो जाते हैं, जो कि कृष्ण का दास होना है। अन्य लोग केवल भौतिक बंधन से मुक्त होते हैं, परंतु भगवान की भक्ति में स्थित नहीं होने के कारण उनका स्थान शाश्वत नहीं है, उनका पुनः पतन होने की संभावना है। लेकिन जो भक्त होते हैं उनका पतन कभी नहीं हो सकता, एक बार वो शुद्ध भक्त बन गए फिर वो पतन नहीं हो सकता उनका, उनका स्थान शाश्वत है। जैसे अगर कोई हवाई जहाज में जाएगा तो उसको उतरना तो पड़ेगा ना, कितनी देर हवाई जहाज में उड़ता रहेगा, है ना, जब उसका पेट्रोल डीजल जो भी है वो खत्म हो जाएगा जहाज का, तो आना ही पड़ेगा ना नीचे। लेकिन कोई ऐसा एक वाहन ले ले, लेकर दूसरे लोक में ही पहुंच जाए और वहां पे रहे, पृथ्वी लोक में नहीं आए, तो ठीक है। तो उसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति केवल निराकार ब्रह्म में जाएगा उसको आना ही होगा वापस, लेकिन जो वैकुंठ लोकों में जाएगा या गोलोक वृंदावन में जाएगा फिर उसे आने की आवश्यकता नहीं है, उसे एक शाश्वत स्थान मिल गया है, नित्य निवास स्थान मिल गया है। चर्चा की थी ना हमने ब्रह्मा जी की प्रार्थना कई दिन पहले, आपको याद है? हाँ, कौन सा था वो श्लोक बताओ? भावाद त्वय्यस्त भावाद अविशुद्ध बुद्धयः, बहुत अच्छा, आरुह्य कृच्छ्रेण परम पदम ततः पतन्त्यधो अनादृत युष्मद अंघ्रयः। यह है प्रमाण। आरुह्य कृच्छ्रेण, हालांकि वो इस पद तक ऊपर चढ़े हैं बहुत ही तपस्या करके, बहुत ही कष्ट को स्वीकार करके, उनकी तपस्या कोई साधारण तपस्या नहीं है, बहुत लंबी तपस्या करके ऐसे ऊंचे स्तर में पहुंचे हैं जिसमें वो सोचते हैं कि मैं मुक्त हो गया हूं, वास्तव में मुक्त नहीं हुए हैं वो। तो क्या हो जाता है? पतन्ति अधः, फिर से नीचे उनका पतन हो जाता है, फिर से भौतिक जगत में आ जाते हैं। क्यों आते हैं? अनादृत युष्मद अंघ्रयः, युष्मद मतलब आपका, और अंघ्रयः भगवान के दो चरण कमल, अंघ्रयः मतलब द्विवचन है, तो आपके दो चरण कमलों का अनादर करने की वजह से अनादृत, इसलिए उनका पुनः पतन हो जाता है। तो स्थाई जो एक अवस्था है वो केवल भगवान के भक्त की है और किसी की नहीं, ठीक है। तो ये जो सिद्धांत है एक एक धीरे 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 बहुत सारे महत्वपूर्ण हैं, इनको आप अच्छी तरह से याद रखिएगा। भले आपको श्लोक याद न रहे कोई बात नहीं, लेकिन इन सिद्धांतों को आप याद रखिए। अच्छा, आगे आगे जल्द पढ़िएगा, फिर क्या बोलते हैं प्रभुपाद जी इस श्लोक का तात्पर्य दे रहे हैं।
ऊपर
संयुक्त कथन से पता चलता है कि
भक्त मुक्ति की किसी भी अवस्था के पीछे नहीं पड़ता। मुक्ति की पांच अवस्थाएं हैं जिनकी विवेचना पहले की जा चुकी है। नंबर एक, भगवान से तथा परात्मय सायुज्य, भगवान के ही लोक में वास अर्थात सारोग्य, भगवान जैसा स्वरूप प्राप्त करना अर्थात सारोग्य, भगवान जैसा ऐश्वर्य प्राप्त करना साष्टि, भगवान का निरंतर सानिध्य प्राप्त करना अर्थात सामित्व। मुक्ति की इन पांच अवस्थाओं में से भगवान से तदापन में तथा सायुज्य किसी भी स्थिति में भक्त को स्वीकार्य नहीं है। भी भक्तों द्वारा वांछित नहीं होती तो भी ये भक्ति के आदर्शों के प्रतिकूल नहीं है।
तो ये महत्वपूर्ण बात है, पांच प्रकार के मुक्तियों में से कौन सी एक मुक्ति है जो किसी भी अवस्था में भक्त स्वीकार नहीं करते? सायुज्य। क्यों नहीं स्वीकार करते?
भगवान की उसमें सेवा नहीं हो सकती।
क्योंकि उसमें भगवान की सेवा नहीं हो सकती। तो अन्य चार जो मुक्तियां हैं उनको भक्त स्वीकार करते हैं कि नहीं करते हैं? क्या कहा है प्रभुपाद जी ने? अगर उसमें भगवान की सेवा की जा सके तो उसे स्वीकार करते हैं। इसलिए यहाँ प्रभुपाद जी कहते हैं ये चार प्रकार की मुक्तियां जो हैं, हालांकि भक्त इनको चाहते नहीं हैं, फिर भी ये भक्ति के सिद्धांतों के विरुद्ध नहीं है। क्यों विरुद्ध नहीं है? क्योंकि इनमें भी भगवान की सेवा हो सकती है। जैसे उदाहरण हमने दिया था, भगवान के लोक में जाकर हम भगवान की सेवा कर सकते हैं, इसलिए विरुद्ध नहीं है, अपने आप में ये विरुद्ध नहीं है। परंतु अगर जो जाने वाला व्यक्ति है, जो भगवान के लोक में जाना चाहता है, वो केवल अपने सुख के लिए जाना चाहता है, अपने दुख से मुक्ति प्राप्त करने के लिए जाना चाहता है, परंतु उसकी इच्छा भगवान की सेवा करने के लिए इतनी तीव्र नहीं है, तो फिर ऐसी मुक्ति भगवान के भक्त नहीं चाहते। ठीक है ना? इसलिए यहां पे कहा गया है न अति विरुद्धते, ऐसे रूप गोस्वामी कहते हैं भक्ति रसामृत सिंध में। ये जो चार प्रकार की मुक्तियां हैं वो अति विरुद्ध नहीं है भक्ति से। अति विरुद्ध नहीं है मतलब थोड़ा तो विरुद्ध है, इसलिए अति कह रहे हैं, थोड़ा विरुद्ध है वो। क्यों थोड़ा विरुद्ध है? क्योंकि वहां जब ऐसे मुक्तियों की कामना या इच्छा रखते हैं भक्त, तो उसमें एक बात छुपी होती है कि मैं सुख प्राप्त करना चाहता हूं, मैं नित्य आनंद प्राप्त करना चाहता हूं। कम से कम वो भौतिक संसार का भोग तो मैं रमण नहीं करना चाहता, भौतिक सुख तो नहीं प्राप्त करना चाहता, ये तो है। फिर भी वो भगवान के धाम में जाकर सुख प्राप्त करना चाहता है, इसलिए ये भी अन्याभिलाषिता शून्यम नहीं है। इसलिए भगवान के भक्त इस चार मुक्तियों को न अति विरुद्ध थे, अति विरुद्ध नहीं है, थोड़ा विरुद्ध है। ठीक है ना? हाँ, आगे बढ़िए। ज्यादातर
तो
ये वापस नहीं आएंगे,
वापस नहीं आएंगे।
फिर भी भगवान, देखो भगवान के भक्तों को ऐसे मुक्तियां मिल ही जाती हैं, वो तो भगवान के धाम जाएंगे ही जाएंगे, परंतु भगवान तो ले ही जाएंगे उनको, ऐसे भौतिक जगत में तो छोड़ेंगे नहीं उनको। लेकिन भगवान के भक्त चाहते नहीं है, ऐसा नहीं कि वो जाने से विरोध है उनका कोई, कि भगवान का धाम अच्छा जगह नहीं है, हमें नहीं जाना, ऐसी बात नहीं है। उनकी इच्छा केवल यही है कि जाना है तो क्यों जाना है, केवल हमारे सुख के लिए जाना है या भगवान की सेवा के लिए जाना है? अगर भगवान की सेवा हमारे लिए प्रमुख है तो वो तो कहीं भी की जा सकती है, नरक में की जा सकती है, स्वर्ग में, पृथ्वी लोक में, ब्रह्म लोक में, कहां भी कर सकते हैं सिवाय निराकार ब्रह्म के, और कहीं भी हम भगवान की सेवा कर सकते हैं। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि हम भगवान की सेवा करना चाहते हैं, और भगवान अगर इच्छा करे कि हम उनकी सेवा उनके धाम में करें तो बहुत अच्छा। अगर यही भगवान की इच्छा है तो ठीक है। लेकिन अगर भक्त कोई व्यक्ति सोचेगा
ठीक है सेवा तो कर ही लेंगे ना, ऐसे थोड़ी कि हम सेवा नहीं करना चाहते, लेकिन मुख्य भाव क्या है, मैं तंग आ गया हूं भौतिक जगत से, ये जन्म मृत्यु वगैरह नहीं चाहिए, ये दुनिया का झंझट नहीं चाहिए मुझे, मैं तो भगवान के धाम में रहना चाहता हूं। वो अपना सुख चाह रहा है, वो भगवान का सुख नहीं चाह रहा है, हालांकि सेवा की भावना भी है उसमें, दुष्ट आदमी नहीं है, अच्छा आदमी है, भक्त भी है, लेकिन प्राधान्य किस भाव का है, अपने सुख के, इसलिए वो ठीक नहीं। इसलिए वो भक्त उसको भी बड़े उत्साह से स्वीकार नहीं करते, अगर भगवान चाहे तो ठीक है।
जो आपने कहा कि एक भक्त बिल्कुल निस्वार्थ हो जाता है इसलिए वो भगवान के धाम में जाने की भी उसको चिंता नहीं रहती, तो ऐसे जब शुरू शुरू में भक्त आता है तो नेचुरली वो इसलिए आता है कि उसको पीछ किया जाता है कि अरे जन्म मृत्यु से बचना है तो आओ भगवान की भक्ति करके जाओ, तो ये तो केवल शुद्ध भक्ति के साथ ही ऐसा हो सकता है।
बहुत अच्छा प्रश्न है कि पहले तो हम प्रचार जब करते हैं तो यही कहते हैं ना, मृत्यु जन्म मृत्यु के चक्कर से बचो, ये दुख का सागर है, दुख में क्यों पड़े हो, तो कहते हैं कि मुक्त होने का रास्ता ये है, भगवान के धाम में जाना है, सब सही है, तो ये शुरुआत की अवस्था में कहना आवश्यक है, नहीं तो भक्ति आएगा क्यों, सोचेगा यहीं पर मैं पड़ा रहूं भौतिक जगत में, तो आएगा नहीं, जब तक उसको पता नहीं होगा कि ऐसी भी कोई दुनिया है, भगवान का धाम है जहां शाश्वत आनंद का जीवन है, तब वो आएगा आगे। इसलिए शुरुआत में ऐसे प्रचार होता है, लेकिन जब भक्त को पता चलता है सिद्धांत, धीरे 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 फिर उसकी चेतना और विकसित होने लगती है, और फिर वो सोचता है हाँ ठीक है ये संसार बड़ा भयानक है, परंतु अगर भगवान की सेवा करने के लिए मुझे यहां रहना पड़े तो मैं तैयार हूं, मैं अपने दुख की चिंता नहीं करता, मैं भगवान की सेवा में मग्न रहूंगा, तो ये आगे चल के उसकी भावना जब उसको समझ में आती है कि इस वास्तव में भक्ति का सिद्धांत क्या है। और दूसरी बात यह है कि ऐसे सेवा में भगवान के भक्त दिव्य आनंद की अनुभूति करते हैं, वो दुख उनको नहीं लगता, दुख छू भी नहीं सकता उनको, ऐसा नहीं है कि भगवान का शुद्ध भक्त भौतिक जगत में है इसलिए वो अन्य बद्ध जीवों की तरह पीड़ित अवस्था में रहेगा, बाहरी रूप से पीड़ित क्यों ना हो, परंतु अंदर से वो ऐसे दिव्य आनंद को प्राप्त किया हुआ है जिनका जिसके बारे में अन्य लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। तो भगवान अपने भक्त को कभी त्यागते नहीं है, अगर देखेंगे कि मेरा भक्त मेरी सेवा के लिए भौतिक जगत में रहने के लिए तैयार है तो भगवान क्यों नहीं देखभाल करेंगे ऐसे भक्त का, अवश्य करेंगे। ठीक है, वो तो है, नहीं हमारा उद्देश्य होना चाहिए भगवान की शुद्ध सेवा करना, शुद्ध सेवा, शुद्ध सेवा करने के बाद भगवान तो ले ही जाने वाले हैं, इसमें कोई संशय नहीं है, भगवान जानबूझ को हमके सृष्टि में भौतिक जगत में नहीं रखने वाले हैं, परंतु हमारी भावना होनी चाहिए ऐसे, केवल सेवा चाहिए। ठीक है ना, ये भक्ति रसामृत सिंधु का सिद्धांत। हाँ माता जी आपको हाँ ऐसे भगवान तो हाँ अवश्य भगवान अपने शुद्ध भक्तों को भेजते हैं, अब खुद भी आते हैं जैसे गौरांग महाप्रभु के रूप में आए, और उनके जितने भी पार्षद थे वो सब नित्य सिद्ध हैं, सब भगवान के धाम से विशेष करके अवतीर्ण हुए हैं बद्ध जीवों का कल्याण करने के लिए, जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर, ये सब नित्य सिद्ध माने जाते हैं जिनको विशेष करके भगवान ने भेजा है यहाँ प्रचार करने के लिए, और वो आए हैं नरोत्तम दास ठाकुर, ये सब नित्य सिद्ध हैं। तो खास यहां प्रचार करने के लिए आए हैं और चले जाते हैं, एक जीवन तैयार हो जाते हैं। ऐसे नहीं कि अरे फिर से मुझे वहां भेज रहे हैं, फिर से भेज रहे हैं। जैसे देखिए हमारे भक्त लोग कभी जेल में प्रचार करने जाते हैं ना, जाते हैं ना, कोई घबरा जाते हैं कि भक्त आप जेल में जाओ प्रचार करने के लिए, तो घबराते हैं कि वो सोचते हैं क्या कि मुझे जेल में डाला जा रहा है, ऐसा नहीं सोचते हैं ना। वो तो जानते हैं कि हम केवल प्रचार के लिए जा रहे हैं जेल में, इस भावना से जाते हैं। और जब जेल के अंदर जाते हैं, ज्यादा समय अगर बिताते हैं तो देखते हैं कि अरे अरे दूसरों की अवस्था क्या है, यहां सब कैदी हैं, कितने दुखी हैं, तो उनका हृदय प्रभावित हो जाता है उससे, और इसलिए वो अच्छा प्रचार करते हैं। लेकिन वो भेजे गए हैं विशेष करके उनका उद्धार करने के लिए। ठीक उसी प्रकार से कई बार भगवान अपने नित्य सिद्ध शुद्ध भक्तों को भेजते हैं प्रचार करने हेतु, बद्ध जीवों का उद्धार करने हेतु।
जब में बता रहे थे गोपाल बड़े गोस्वामी का आनंद मंजरी का स्वरूप स्वरूप था, भगवान अपने प्रतिनिधि को भेजते हैं, जैसे हम प्रभुपाद है, ऐसे तो कोई देखा नहीं जाता कि जो शुद्ध एकदम शुद्ध भक्त हो गया, जो भगवान ने ना भेजा हो उसके यही भौतिक जगत में, जो अपने आप यहाँ से शुद्ध भगवान भेजते हैं वही तो शुद्ध भक्त है।
ऐसे कितने सारे हैं, बहुत बड़ी संख्या है। हमने तो केवल थोड़े आचार्यों के नाम लिए, और तो कितने शुद्ध भक्त हुए हैं, भगवान उनको सबको ले जाते हैं वापस। तो ऐसे कोई संकोच करने की बात नहीं, जाना है, नंबर है सबका, केवल समय की बात है, सब लाइन में है, संशय नहीं करना है, नंबर आएगा हमारा, लेकिन सही समय पर आएगा। जब पूरी तरह से शुद्ध हो जाएंगे तब नंबर आ जाएगा।
अच्छा आगे पढ़िएगा। यहाँ पे आप रुके थे, वहीं से पढ़िए आगे।
मुक्ति की इन चार अवस्थाओं को प्राप्त हुए कुछ मुक्तात्मा कृष्ण के प्रति स्नेह भी उत्पन्न कर सकते हैं और वे आध्यात्मिक आकाश में गोलोक वृंदावन में भेजे जा सकते हैं। दूसरे शब्दों में जो लोग वैकुंठ लोग जा चुके हैं और जिन्हें चार प्रकार की मुक्तियां प्राप्त हैं, वे भी कभी कभी कृष्ण के प्रति स्नेह विकसित कर सकते हैं और कृष्ण लोक को भेज दिए जा सकते हैं।
बहुत महत्वपूर्ण बात, क्या बात है बताइए।
जो लोग वैकुंठ में रहते हैं उनको कृष्ण के प्रति चार प्रकार, जैसे कि आज वेंकट भट्ट का मिल जाए, उनको भी गोलोक भेज जा सकते।
कभी कभी भक्त ये पूछते हैं, ये प्रश्न अक्सर भक्त पूछा करते हैं कि अगर हमें वैकुंठ लोक की प्राप्ति हो गई तो वैकुंठ लोक में स्थित होकर क्या हम गोलोक वृंदावन जा सकते हैं? क्या उत्तर है आपका? जा सकते हैं। क्या प्रमाण है? यही प्रमाण है, यहाँ यहाँ पे यहीं पे प्रभुपाद जी कहते हैं कि वैकुंठ लोक से भी कोई गोलोक वृंदावन जा सकते हैं अगर उनको वृंदावन का प्रेम ऐसे मिल जाए तो। हालांकि दुर्लभ है, वैकुंठ लोक से भी अगर कोई जाना चाहे दुर्लभ है, परंतु ऐसे संभव है। अतृप्ति नहीं, उसको जब एक अलग रस का स्वाद मिल जाता है तो वहां होना चाहता है। और चिंतामणि धाम है, भगवान का धाम है ना, तो कोई जा सकते हैं। और विशेष करके भक्तों के संग से ऐसा स्वाद, ये ऐसी रुचि उत्पन्न हो सकती है, फिर ऐसे स्वाद से व्यक्ति फिर कृष्ण लोक में पहुंच सकता है। बिल्कुल। और हमें भौतिक विचार नहीं रखना चाहिए असंतुष्टि के बारे में। जैसे ब्रज गोपियां असंतुष्ट थीं, एक दृष्टि से देखा जाए तो, साधारण लौकिक दृष्टि से देखा जाए
तो वो असंतुष्ट थी जबकि श्री कृष्ण वृंदावन छोड़ के चले गए। लेकिन क्या वो साधारण असंतुष्टि है? क्या है वो? दिव्य प्रेम का विप्रलंब भाव का शिखर है, उस चीज को गोपियां प्राप्त कर चुकी हैं। सबसे ऊंचा आनंद का अनुभव वो कर रही थी। लौकिक दृष्टि से लगता है कि अरे वो तो कितना दुखित अवस्था में थी, बहुत पीड़ित थी, तो हमें भौतिक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। तो उसी प्रकार से आध्यात्मिक जगत में भी हमें नहीं सोचना चाहिए कि असंतुष्ट, जिस प्रकार से हम लोग यहां असंतुष्ट हैं वैसे असंतुष्टि वहां नहीं है। ठीक है।
जैसे कि यहां बताया गया है कई बार द्वारका के ऐश्वर्य को भक्त लोग नहीं चाहते हैं, न तो वैकुंठ के ऐश्वर्य से, नहीं कृष्ण की राजधानी द्वारका से ऐश्वर्य आकृष्ट होता है।
कहा
इसी
वो आगे चल के आएगा ना, तो आगे अभी हम लोग पहुंचे नहीं वहां तक। आगे पहुंचेंगे अभी। मिले तो मिल भी जाए, अगर उनको जैसे कृष्ण लोक भगवान के धाम में तो सब कोई जहां भी जा सकते हैं। जैसे बृहद भागवतामृत में सनातन गोस्वामी वर्णन करते हैं गोप कुमार का, वो तो थे वैसे गोवर्धन के रहने वाले, गोलोक वृंदावन के, लेकिन वैकुंठ लोकों में भी गए, वो स्वर्ग लोक में गए, ब्रह्म लोक में गए, शिव लोक में गए, वैकुंठ लोकों में गए, अंततः गोलोक में गए। तो ऐसे संभव है, हालांकि इतना कॉमन नहीं होगा ये, परंतु संभव है, क्योंकि भगवान के धाम में क्या संभव नहीं है बताइए। साधारणतः जो अपने भाव में स्थित है वो उसी भाव में रहना चाहता है, साधारणतः ये सिद्धांत है, ये नियम है। परंतु लालसा किसमें भी उत्पन्न हो सकती है, और आगे चल के इसी पॉइंट मैं आगे चल के हनुमान जी का उदाहरण देखेंगे, फिर ये पॉइंट में हम वापस आएंगे।
कोई छोड़ना क्यों जाएगा भगवान को? वो लोग छोड़ के कौन जाएगा, मतलब विष्णु जी के पास, वहां तो ऐश्वर्य है।
हाँ, तो गोलोक वृंदावन छोड़ के कोई नहीं जाता, क्योंकि गोलोक का वो आगे चल के हम देखेंगे आगे चल के, कि वैकुंठ श्रेष्ठ है या गोलोक श्रेष्ठ है, विष्णु श्रेष्ठ है या कृष्ण श्रेष्ठ है, विष्णु और कृष्ण दोनों एक हैं या अलग हैं? दोनों एक हैं या अलग है? हमारा प्रश्न ये है, बहुत बुद्धिमान है, सही उत्तर है ये, एक भी है और अलग भी। अभी ये बताइए, आसानी से हम छोड़ेंगे नहीं आप, अब ये बताइए क्यों है, एक क्यों है और अलग क्यों है?
क्योंकि ये भगवान श्री कृष्ण पूर्ण चतुष्ट गुण है।
एक क्यों है वो बताइए पहले।
क्योंकि वे मूल है।
कौन, कृष्ण या नारायण?
कृष्ण।
तो फिर नारायण
इनका अभिन्न
अंश है, भिन्न अंश है। कृष्ण और नारायण एक ही व्यक्ति हैं, दो रूप में, व्यक्तित्व एक है, हालांकि व्यक्तित्व अलग अलग भी है, लेकिन कृष्ण और नारायण अभिन्न हैं, क्योंकि वो एक ही भगवान हैं जो अलग रूप में प्रकट हुए हैं, केवल उनका विस्तार है बस। अंतर किसमें है? रस और भाव का अंतर, बस ये महत्वपूर्ण बात, रस का अंतर। और आगे चल के ये भी हम देखेंगे अगले अगले अध्याय में, अंतर रस का है। रस का स्वाद
जो श्री कृष्ण कर सकते हैं वो वैकुंठ में नारायण भी नहीं कर सकते। ऐसे कोई साधारण उदाहरण दीजिए, ऐसे कौन से प्रकार की लीलाएं हैं जो कृष्ण करते हैं जो नारायण ऐसे करेंगे कल्पना भी नहीं कर सकते। गोप बालकों का झूठा खा लेना, रासलीला करना और
नंगे पांव घूमना,
विहार करना, अब बांधे जाना, कोई नारायण को बांध सकता है? नारायण के पीछे कोई छड़ी पकड़ के हाथ में भाग सकता है? नहीं। ब्रज की लीलाएं जितनी भी है, कोई नारायण के कंधों पर चढ़ के बैठ सकता है? संभव नहीं। कल्पना भी कर सकते हैं? नहीं। एक लिए कृष्ण है, कृष्ण में ऐसे रस हैं, ऐसे रसों का आदान प्रदान करते हैं श्री कृष्ण, इसलिए रस का अंतर है, अन्यथा कोई अंतर नहीं है। जैसे समझिए, एक सिंपल उदाहरण, साधारण उदाहरण देंगे और विषय को यहीं समाप्त करेंगे, आगे भी और इसी टॉपिक में पढ़ना है। एक व्यक्ति है जो बड़े कंपनी के मालिक हैं और उनके नीचे कई कर्मचारी काम करते हैं, तो वो व्यक्ति जब दफ्तर में आता है तो सूट टाई वगैरह सब पहन के आता है, सब लोग खड़े हो जाते हैं, कोई सलाम करते हैं, कोई गुड मॉर्निंग सर कहते हैं, कोई क्या क्या कहते हैं, हाथ जोड़ते हैं और सभी लोग डरते हैं उनसे, यस सर नो सर करते रहते हैं, जो चाहिए वो काम करा लेते हैं। फिर घर में जाते हैं, घर में जाने से क्या परिस्थिति होती है, कोई बात सुनता है उनकी? कौन सुनेगा उनकी बात? बेटा आएगा सीधे कंधों पे चढ़ेगा, अरे उतरो, नहीं उतरूंगा, क्या कर सकते हैं, हैं बड़े मालिक लेकिन बच्चे को क्या पड़ी है मालिक है या नहीं है। बच्चा परवाह करता है कि को कौन से कितने बड़े फैक्ट्री का मालिक है मेरा पिता? उसके परवाह नहीं है, वो तो कंधे पे बैठ जाता है, वो कुश्ती करेगा, कुछ करेगा, पिताजी के साथ बाल खींचेगा। तो वो वही व्यक्ति जब अपने घर में आता है तो उसका पूरा भाव बदल जाता है, उसे वो भी सूट टाई वगैरह नहीं पहनता, घर के कपड़े पहनता, आराम से विहार करता है, परंतु जब ऑफिस में होता है तो बिल्कुल ऑफिस का आदमी बन जाता है, यस सर नो सर में हो जाता है। उसी प्रकार से विष्णु और कृष्ण, कृष्ण कौन है? घर के भगवान है, और सॉरी कृष्ण घर के भगवान है और विष्णु ऑफिस के भगवान है। है ना, इतना ही अंतर बस। क्योंकि यहां उनको सब सृष्टि का सृजन करना है, सृष्टि का सृजन करना, सृष्टि का संहार करना, सृष्टि का पालन करना, कितने सारे कार्य होते हैं, कृष्ण को थोड़ी इन कामों में कोई रुचि है। वृंदावन में जाइए, कृष्ण को बोलिए आपको सृष्टि संभालना, बोलेंगे मुझे थोड़ी करना है ये सब, मुझे तो बांसुरी बजाना है, मुझे तो गायों को चराना है, अब ये सब सृष्टि का पालन करते रहूंगा तो गायों को कब चराऊंगा मैं, रासलीला कब करूंगा मैं, है ना। तो है वही व्यक्ति, तो घर वाला व्यक्ति सही व्यक्ति है या दफ्तर वाला आदमी सही व्यक्ति है, कौन है? दोनों एक ही है ना, व्यक्ति एक ही है, परंतु दफ्तर में और घर में केवल अलग भाव उन्होंने स्वीकार किए हैं, बस सही है ना। तो उसी प्रकार से कृष्ण और नारायण एक ही हैं, परंतु दो स्वरूप धारण किए हैं, क्यों? अलग रसों का स्वाद लेने के लिए। और विष्णु है वैकुंठ के नारायण, और कृष्ण है गोलोक वृंदावन के। हाँ आगे पढ़िएगा।
चार प्रकार की मुक्त अवस्थाओं को प्राप्त मनुष्य अपने जीवन की विभिन्न अवस्थाओं से होकर गुजरना पड़ सकता है। प्रारंभ में उन्हें कृष्ण के ऐश्वर्य की इच्छा हो सकती है, किंतु प्रौढ़ावस्था में कृष्ण के प्रति प्रेम जो वृंदावन में प्रकट होता है उनके हृदयों में प्रमुख बन जाता है। फलतः शुद्ध भक्त साहिल्य मुक्ति कभी भी स्वीकार नहीं करते, भले ही कभी कभी अपने चार मुख्य अवस्थाओं को अनुकूल क्यों न मान लें।
ठीक है, आगे पढ़िए।
भगवान के भक्तों में से जो भक्त कृष्ण के मूल रूप अर्थात वृंदावन बिहारी के प्रति आकर्षित होता है वह अग्रणी अर्थात प्रथम श्रेणी का भक्त माना गया है। ऐसा भक्त ना तो वैकुंठ के ऐश्वर्य से ना ही कृष्ण की राजधानी द्वारका के ऐश्वर्य से आकर्षित होता है। श्री रूप गोस्वामी इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि गोकुल या वृंदावन में भगवान की लीलाओं द्वारा आकर्षित होने वाले भक्तगण सर्वश्रेष्ठ है।
बहुत अच्छा, इस बात को समझ गए आप। कोई प्रश्न है आपका? कोई द्वारका का प्रश्न था? क्या प्रश्न था?
जैसे द्वारका में से रुक्मिणी द्वारका चिंता करेंगे तो वही कुछ चले जाएंगे मार बता दे मार बता चिंता मत करो ऐसा नहीं होता है। भगवान मतलब एक ही द्वार की क्यों या चिंता के बोलता है?
कोई बात नहीं, ऐसा नहीं कि आप अगर द्वारका में सेवा कर रहे हैं इस्कॉन में तो आप द्वारका चले जाएंगे, ऐसा आवश्यक नहीं है। तो इसका मतलब है कि जो बाहर रहते हैं, जैसे कोई बंबई दिल्ली में रहते हैं और इस्कॉन में सेवा करते हैं, उनका क्या होगा फिर? जहां भी आप रह रहे हो, जहां भी आप सेवा कर रहे हो, अगर आपका भाव वृंदावन के निवासियों के जैसा है, उनके पदचिन्हों में आप चल रहे हैं, तो आप वृंदावन की प्राप्ति करोगे, गोलोक वृंदावन की। ये भाव के ऊपर है।
तो जी अब ये कैसे कहेंगे किसी को कि अगर कोई कहता है कि गोलोक और वैकुंठ में से कौन सा श्रेष्ठ है, विष्णु जी और श्री कृष्ण में क्या कौन श्रेष्ठ पाना किसको, तो फिर क्या उत्तर दे सकते हो, कैसे कन्विंस कर सकते?
अगर लोगों को बताना है कि विष्णु क्या है, श्री कृष्ण क्या है, श्रेष्ठ कौन है, क्या है, तो ये इस पर निर्भर होता है कि सामने वाला किस स्तर पे है, उसके हिसाब से हम बता सकते हैं। अब जो व्यक्ति भक्त ही नहीं है, कुछ भी नहीं जानता, उसको आप इतना सब डिटेल में बताते जाएंगे तो कोई फायदा नहीं है, है ना? उसको केवल बताना कृष्ण नारायण एक ही है, वो है भी सत्य, गलत नहीं है, वो है सत्य। बताइए हाँ कृष्ण नारायण सब है, आप बस भक्ति कीजिए, आप ये सब चार नियम का पालन कीजिए, जप कीजिए, और जैसे जैसे व्यक्ति भक्ति में गंभीर होने लगता है फिर उसको ऐसी सूक्ष्म बातें बतानी चाहिए। सूक्ष्म है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। तो जब बाहर प्रचार करने जाएंगे, हालांकि हम बताते हैं कि हाँ केवल भगवान की सेवा ही सब कुछ है, हम मुक्ति भी नहीं चाहते, केवल ऐसे बातों बातों में बता सकते हैं, लेकिन मूल सिद्धांत वो भक्तों के बीच में अधिक चर्चा होनी चाहिए। बाहर जब हम प्रचार करने जाते हैं तो मूल बात यही होनी चाहिए कि ये दुनिया कैसे दुख का सागर है, कैसे जन्म मृत्यु के बंधन में हम फंसे हुए हैं, यहां से कैसे मुक्त होना चाहिए, क्यों मुक्त होना चाहिए, मुक्त होकर हम कहां जाएंगे, वहां क्या करेंगे। उनको आकर्षण देना चाहिए कि यहां कुछ और श्रेष्ठ एक स्थान है जीवन का, तो देश काल पात्र के अनुसार हमें बताना चाहिए सामने वाला आदमी कैसे है, कौन कौन और है, समय कौन सा है, परिस्थिति क्या है, उस हिसाब से हमें प्रचार करना चाहिए।
भक्त को कैसे हमें समझना हो तो कैसे इसकी क्या रीजन है,
किस चीज के लिए क्या कारण है
कि कौन श्रेष्ठ है,
कौन श्रेष्ठ है, कृष्ण या विष्णु? अभी तो प्रभुपाद जी ने उत्तर दिया इसका, फिर से पढ़िए, पढ़ो, आपके प्रश्न का उत्तर प्रभुपाद के द्वारा दिया जाएगा।
भगवान के विभिन्न प्रकार के भक्तों में से
सेकंड लास्ट,
सेकंड लास्ट,
सेकंड लास्ट, भगवान के विभिन्न प्रकार के भक्तों में से जो भक्त कृष्ण के मूल रूप अर्थात वृंदावन बिहारी के प्रति आकृष्ट होता है वह अग्रणी अर्थात प्रथम श्रेणी का भक्त माना जाता है।
क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण भगवान के श्रेष्ठ रूप हैं, आदि रूप हैं। क्यों? अभी चर्चा किए ना हम, अभी अभी कर रहे थे ना चर्चा कि क्योंकि रस रस के दृष्टि से श्रेष्ठ है। तत्व में दोनों एक हैं, कृष्ण भी नारायण भी, लेकिन रस में अंतर है। अच्छा अगला श्लोक जरा बताएंगे, है कौन सा? सिद्धांतो त्वभेदेपि, वो है क्या श्लोक? ये हम करना भूल गए। अच्छा इसके पहले नहीं है ना, सिद्धांतो त्वभेदेपि नहीं है ना वो श्लोक? अच्छा वो लगाना भूल गए होंगे हमसे, ठीक है अगली बार आपको बताएंगे। तो कृष्ण भगवान के मूल रूप हैं और अन्य जितने भी हैं वो सब भगवान के विस्तार हैं, और मूल होने के नाते जो रस का आदान प्रदान श्री कृष्ण करते हैं वो अन्य किसी भी रूप में नहीं पाया जाता, इसलिए वो सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं।
तो इसका कोई जैसे प्रमाण शास्त्रों से कहीं?
तो प्रमाण तो पढ़ते ही आए हैं अभी हम, और भक्तिरसामृत सिंधु में तो भरे हैं उदाहरण।
ये जो अभी ये कहा तो क्या इसका कोई भक्तिरसामृत सिंधु में श्लोक है?
बिल्कुल अगली बार आपको बताएंगे, सिद्धांतो त्वभेदेपि वो आपको अगले बार बताएंगे। ठीक है, तो आप उसको नोट कर लेना, ये चैतन्य चरितामृत में भी श्लोक आता है। आज सुबह हम भागवत क्लास में गोपाल भट्ट, वेंकट भट्ट और चैतन्य महाप्रभु के वार्तालाप का संक्षिप्त वर्णन कर रहे थे, तो उस दौरान भी ये श्लोक आता है, सिद्धांतो त्वभेदेपि। चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, अगली बार आपको सुनाएंगे, लिखा के फिर उसको हम पाठ उसका पाठ करेंगे। ठीक है, अच्छा आगे पढ़िए आखिरी पैराग्राफ जो है।
भगवान के किसी विशेष रूप के प्रति अन्य रूपों के प्रति आकर्षित नहीं होना चाहता। उदाहरणार्थ भगवान रामचंद्र के भक्त हनुमान को ज्ञात था कि भगवान रामचंद्र और भगवान नारायण में कोई अंतर नहीं है, तो भी वे केवल भगवान रामचंद्र की सेवा में लगे रहना चाहते थे। ऐसे भक्त विशेष द्वारा विशिष्ट आकर्षण के कारण है। भगवान के नाना रूप है तो भी कृष्ण आदि रूप है। यद्यपि भगवान के नाना रूपों के भक्तगण एक ही कोटि के होते हैं, किंतु ये कहा जाता है कि जो भगवान कृष्ण के भक्त है वे समस्त भक्तों की सूची में सर्वोपरि है।
तो हनुमान जी के उदाहरण से हम क्या सीख सकते हैं? यहाँ प्रभुपाद जी कह रहे हैं, भगवान के किसी विशेष रूप के प्रति अनुरक्त भक्त अन्य रूपों के प्रति आकृष्ट नहीं होना चाहता। जैसे हनुमान जी का उदाहरण है कि उनका आकर्षण श्री रामचंद्र के प्रति है, वो जानते हैं श्री कृष्ण कौन है, विष्णु कौन है, नारायण कौन है, रामचंद्र कौन है, और रस ऐसे रसों का आदान प्रदान श्री कृष्ण कर सकते हैं जो रामचंद्र जी नहीं कर सकते, फिर भी हनुमान जी को रामचंद्र जी ही की सेवा ही चाहिए। क्योंकि उनका भाव वो है, वो उसी रूप से उसी भाव से आकृष्ट होते हैं। हनुमान जी को आप कितना भी कीजिए उनको हटाने के लिए कि देखो आप आइए यहां, वो हटेंगे नहीं, वो अटल है अपने श्रद्धा में रामचंद्र के प्रति। चैतन्य चरितामृत में ऐसे कथा आती है, किनकी? मुरारी गुप्ता। कौन बताया गया ये कथा बताइए आप, किन्हें किनको पता है? इसलिए मैं क्या करना चाहता हूँ
अभी,
हाँ मैं आत्महत्या करना चाहता हूँ क्योंकि मैं अटक गया हूँ। एक और क्या है, आपका आदेश है कि मुझे श्री कृष्ण की सेवा करनी चाहिए क्योंकि श्री कृष्ण ही रसराज हैं, और दूसरी ओर क्या है, रघुनाथ जी के चरण में मैंने क्या कर दिया है, अपना मस्तक
बेच दिया है, तो दोनों का समन्वय नहीं हो पा रहा है, तो मैं क्या करूंगा, अभी आत्महत्या कर दूंगा, कोई जीने में कोई मतलब नहीं है। तो फिर क्या हुआ? तो मुरारी गुप्त जो है वो हनुमान जी के अवतार हैं, जो गौर लीला में आए हैं। उसी प्रकार से और एक भी उदाहरण है चरितामृत, यही बात हुआ था। हाँ बोलिए। फिर रूप गोस्वामी ने वही कहा जो चैतन्य महाप्रभु ने मुरारी गुप्त से कहा था। तो दोनों अपनी जगह में अपने स्वरूप में स्थित थे, और उनका स्वरूप क्या था? राम भक्त थे वो स्वरूप से। यहां हम लोगों को नहीं मालूम कि हमारा स्वरूप क्या है, इसलिए ऐसे किसी को नहीं बोलना चाहिए कि मैं तो दुर्गा भक्त हूं, तो दुर्गा भक्त से क्यों हटा रहे हो, मैं दुर्गा भक्त ही उपासना करता रहूंगा। लेकिन ये तो भगवान का रूप नहीं है, दुर्गा देवी कौन है, भगवान की तो सेविका है, भक्त है। तो भगवान के कोई रूप भी हो, अगर कोई यहाँ रामचंद्र की सेवा कर रहे हो, निष्ठा हो उनको भले, परंतु शायद वो अब अपने स्वरूप तक प्राप्त नहीं हो गए हो, अपने स्वरूप सिद्धि की प्राप्ति नहीं की होगी उन्होंने, तो पता नहीं है। इसलिए कृष्ण भावनामृत आंदोलन का उद्देश्य है कि सबको ये ज्ञान फैलाना, जो जिस भाव में अपने आप को फिट करे वो ठीक है, परंतु सर्वश्रेष्ठ जो सिद्धांत है वो सभी को पता होना चाहिए कि वृंदावन के जो कृष्ण हैं वही सर्वश्रेष्ठ रूप हैं भगवान के, परम सत्य के। क्योंकि जिन रसों का आदान प्रदान श्री कृष्ण करते हैं, भगवान के कोई भी अन्य रूप नहीं करते हैं। साधारणतः सिद्ध रूप में जब कोई व्यक्ति भगवान के एक विशेष रूप के प्रति आकर्षण हृदय में बनाए रखता है तो उसको वो कभी त्यागता नहीं है। इसलिए जब वैकुंठ से गोलोक जाने की बात हो रही थी, हालांकि ये संभव है परंतु अधिकतर नहीं होता ऐसे, क्योंकि भक्त जो होता है वो अपने ही स्वरूप में बिल्कुल संतुष्ट होता है और उसी प्रकार की भक्ति वो करना चाहता है, अपने इष्ट देव को छोड़ना नहीं चाहता है। हालांकि वो जानता है सब कुछ, कृष्ण कौन है, नारायण कौन है, सब जानता है, परंतु वो छोड़ना नहीं चाहता।
उस रस में वो इतना रम चुका था कि उसको छोड़कर उस आनंद को, रस को बिल्कुल भी छोड़कर क्षण भर में छोड़ना चाहते हैं, यही कारण है।
यही कारण उनका स्वरूप ही है। यही है, इसको इसी को कहते हैं स्वरूप। अब वैकुंठ की बात तो दूर है, गोलोक वृंदावन में भी देखिए, गोलोक वृंदावन में भी ग्वाल बाल जानते हैं कि माधुरी रस श्रेष्ठ है, लेकिन ग्वाल बाल नहीं चाहते कि मैं गोपी बन जाऊं, वो तो अपने जगह में पूरे संतुष्ट हैं। ऐसा नहीं कि उनको बुद्धि नहीं, कि वो समझते नहीं है कि क्या है माधुर रस, क्या है सख्य रस, क्या है वात्सल्य रस, क्या है, वो सब जानते हैं, परंतु उनका भाव क्या है? सख्य। उसी में उनका स्वरूप है, तो उस स्वरूप में वो स्थित है और बिल्कुल संतुष्ट है, वो सोच भी नहीं सकते। ठीक है, गोपियां मेरे लिए बहुत अच्छे हैं, हम हाथ प्रणाम करते हैं, लेकिन हम यही रहेंगे, हमारे लिए हम ये संतुष्ट हैं। उनके स्वभाव के अनुसार उनको स्थित किया गया है। हर एक जीव का स्वरूप होता है जो फिक्स होता है, लेकिन हमें नहीं पता हमारा स्वरूप क्या है। इस समय हमारा स्वरूप है तो केवल एक ही है, वैष्णव दास, गुरुदास और वैष्णव दास बस। इसलिए जो भगवान बताते हैं वैकुंठ से गोलोक जाए जा सकता है, परंतु याद रखिए, जैसे कि आज सुबह चर्चा हो रही थी भागवत क्लास में, लक्ष्मी देवी भी रासलीला में प्रवेश नहीं कर पाई। क्यों? क्योंकि वैकुंठ भाव को त्याग नहीं पाई, ऐश्वर्य भाव को त्याग नहीं पाई। गोलोक वृंदावन में ऐश्वर्य भाव नहीं है, ऐश्वर्य है, ऐश्वर्य भाव नहीं है। वृंदावन में वैकुंठ से ज्यादा ऐश्वर्य है, परंतु प्राधान्य माधुर्य का है। ठीक है, तो इससे अभी चौथा अध्याय समाप्त हुआ और पांचवा अध्याय। हाँ, तो ये बताना चाहिए हमारा स्वरूप है गुरुदास और वैष्णव दास बस।
भौतिक संसार में जो लोग जो भी आए उनके स्वरूप भी यही बननी चाहिए कि वे गुरुदास वैष्णव दास
बस। आगे चल के सही समय पर सब कुछ खुल जाएगा, सब कुछ ज्ञात होगा, लेकिन समय से पहले अगर हम जानने का प्रयास करेंगे तो वो ठीक नहीं है। इसे मान लीजिए दूसरी कक्षा में एक विद्यार्थी है और उसका बड़ा भाई दसवीं कक्षा में है, और वो उसकी किताब खोलकर जो बड़ा भाई पढ़ाई कर रहा है वो जाके उसकी गणित की किताब में पढ़ेगा, ये कैसे है, ये आपने कैसे गणित कर दिया? अरे तुम बैठो, तुम्हें सब सही समय में पता चल जाएगा। अभी वो बताने से उसे समझ में भी आएगा? नहीं आएगा। दूसरी कक्षा का लड़का दसवीं कक्षा के गणित कैसे समझ सकता है? नहीं समझ पाएगा। बोलेगा तुम ठहरो, तुम जब हो जाओगे दसवीं कक्षा में आ जाओगे तुम भी समझ पाओगे। उसी प्रकार से ये विषय हमारे लिए इस समय नहीं है कि हमारा स्वरूप क्या है। हम ये जान सकते हैं कि हाँ ये स्वरूप नाम का चीज की नाम की चीज है, और अलग अलग जीवों के अलग अलग स्वरूप होते हैं, अलग अलग रसों में सब स्थित होते हैं, चाहे वो वैकुंठ में हो, द्वारका में हो, अयोध्या में हो, गोलोक में हो। और हमारा स्वरूप क्या है वो भगवान ही सही समय पे सब प्रकट कराएंगे। तो ये इनको प्राकृत जो ऐसे कहते हैं कि हमें भजन करने की आवश्यकता नहीं है, हम हमारे स्वरूप को जान गए हैं, ऐसे लोगों को प्राकृत सहजीय कहते हैं। ये एक अपसंप्रदाय है जो अपसिद्धांतों को स्वीकार करते हैं। अगर वास्तव में वो जान गया है उसका स्वरूप तो फिर वो करता रहेगा और तीव्रता से करेगा। षड गोस्वामी के पद चिन्हों में हम लोग चल रहे हैं, विशेष करके हमें रूपानुग कहते हैं, रूप गोस्वामी के पद चिन्हों में चलने वाले। रूप गोस्वामी और अन्य गोस्वामी ने कभी ऐसा नहीं कहा कि हम हमारा भजन साधन सब त्याग करेंगे, कि हम कोई, वो सब तो गोपी हैं गोलोक वृंदावन में, लेकिन उन्होंने कभी नहीं कहा कि हम गोपी हैं इसलिए हम अभी भजन हमारा छोड़ देंगे, जप करना छोड़ देंगे, कभी ऐसे नहीं कहा उन्होंने। दंडवत करते थे, परिक्रमा करते थे, अर्चा विग्रह की सेवा करते थे, प्रसाद बनाना, सब कुछ, जो भी सेवा हम लोग कर रहे हैं वो लोग भी करते थे।
ऐसे लोगों से जब मुठभेड़ होती है तो हम लोग क्या करना चाहिए, या वहां से चले जाना चाहिए या
नहीं? अगर उनको समझाने में हम सक्षम हैं तो समझाना चाहिए, अगर हमें उनको समझाने के बजाय वही हमें समझाने बैठ जाए तो वहां से निकल जाना चाहिए। अगर हम उनके गलत सिद्धांत का खंडन कर सकते हैं तो ठीक है, और गलत सिद्धांत अगर उनका खंडन करना है और हम जो बोल रहे हैं वो सुनने के लिए तैयार है तो हम बोल सकते हैं, अगर वो सुनने के लिए तैयार नहीं है तो समय क्यों खराब करना है।
जिस तरह से प्रोफेसर आपने बताया था कि ये एक प्रश्न जो आपने मुक्ति बात क्या है, जैसे आपने बताया था किसी को पहचानना, तो हम लोग अगर ऐसे हो ही जाते हैं उम्र ऐसे लोगों से तो उनके सामने स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट क्या रह सकेंगे
इसके बारे में,
ये खुद को बताते हैं कि हम अभी सरस्वती को पा लिए हैं, भजन करने की हमें जरूरत नहीं है,
कहिए जरा इंतजार कीजिए, जब दांत दांत में कोई तकलीफ हो जाएगी तो दांत के डॉक्टर के पास कैसे भागेंगे देखिए, फिर आपके स्वरूप क्या है वो आपको पता चलेगा। प्रभुपाद ऐसे कहा करते थे, भक्त जो वास्तव में भक्ति क्या है वो आपको भक्ति के आचार्यों से सीखनी चाहिए, बताइए। ऐसा नहीं कि मनगढ़ंत ढंग से कोई भी व्यक्ति कहने लगे मैं सिद्ध हूं, ये इसको कहिए, आप उनको बताइए कि ये आपका अपसिद्धांत है, आप लोग प्राकृत सहजी हैं, सहजी हैं, वृंदावन में ऐसे कई मिलते हैं, वो अपने आप को अविशुद्ध बुद्ध है, विमुक्त मारिन है, अपने आप को मुक्त समझते हैं कि हम बहुत ऊंचे पहुंच गए, हम कोई सोचता है हम गोलोक वृंदावन में मोर हैं, वो मोर जैसे पंख वंख लगाएंगे नाचेंगे, और थोड़े लोग सोचते हैं हम लोग गोपियां हैं तो पुरुष होते हुए भी महिलाओं के वस्त्र पहनते हैं, ये सब सहजी है, प्रकृति सहजी है। हालांकि तीन गुणों के चंगुल में फंसे हुए हैं अभी तक, हृदय अनर्थों से भरा हुआ है, भक्ति क्या है ठीक से पता नहीं है, लेकिन फिर भी अपने आप को बहुत ऊंचा समझते हैं, कृत्रिम है उनकी अवस्था, केवल साधारण लोगों की बात नहीं है। अखबार में 6-8 महीने पहले बहुत ये वो बात आई थी कि यहाँ यूपी स्टेट के कोई डीआईजी थे या आईजी थे, मतलब पुलिस के नंबर एक आदमी पूरे राज्य में उत्तर प्रदेश में, वो जब सर्विस में थे वो अपने आप को राधा रानी समझ रहे थे और राधा रानी के ऐसे कपड़े स्त्री के कपड़े वगैरह पहनकर सब आते थे, दफ्तर में भी गए कई बार, तो जब राधा रानी है तो फिर कृष्ण दूर नहीं है। तो बिहार में कोई प्यून था कोई सरकारी दफ्तर में, उसने कहा मैं कृष्ण हूं तो वो भी चले आए। ये सब चलता है समाज में, जब कोई प्रामाणिक संप्रदाय नहीं होता, प्रामाणिक परंपरा नहीं होता, ऐसे ही होगा, कोई भी राधा रानी बन गए, कोई कृष्ण बन गए, और वो वहां से चिट्ठी सब पेपर में आते हैं, ये सब देखिए कितनी श्रद्धा पर ठोस पहुंची लोगों की, जब पब्लिक की पढ़ेगी जनता पढ़ेगी तो कि देखें क्या है ये भक्ति क्या है, चलो छोड़ो इन सब चीजों को, है ना, ऐसे ही कहेंगे ना। और वो कृष्ण ढूंढ रहा है, मैं राधा को ढूंढने के लिए कहां है कहां है, वो बिहार से चले आए यहाँ यूपी में, देखो ऐसे सब चीजें, सब ढोंग है, सब धोखेबाजी है, सब अज्ञान है। इसलिए जब तक प्रामाणिक संप्रदाय नहीं होगा, प्रामाणिक परंपरा नहीं होगी, तब तक ऐसे ही धोखेबाजी चलता रहेगा धर्म के नाम पर, भक्ति के नाम पर। इसलिए ऐसे ग्रंथों को पढ़ना बहुत आवश्यक है भक्तों के लिए। जैसे उस दिन हम वर्णन कर रहे थे कि भक्त लोग भी धोखे में आ जाते हैं, अरे वो तो भक्ति की बात ही कर रहे थे, अरे वो भी तो हरि नाम ही कह रहे थे कि हरि नाम करो, हरि नाम ही सब कुछ है, तो केवल इतने में नहीं जाइए, ये तो ऊपर का है, और थोड़ा आप घिसिए आप देखेंगे अंदर क्या है, अंदर कुछ और ही है। इसलिए हमें बहुत सावधान रहना चाहिए इनसे, इनको ऐसे बताना चाहिए मूल सिद्धांत, ये सब आपके स्वरूप क्या है वो भूल जाइए, पहले बात ये बताइए आपका संप्रदाय कौन सा है, आपकी परंपरा कौन सी है, आप शास्त्रों का पालन करते हैं या नहीं। तो जब तक प्रामाणिक संप्रदाय में आप नहीं जुड़े हुए नहीं हैं, आपके भक्ति का कोई मूल्य नहीं है। संप्रदाय विहीन आये मंत्रास्तु निष्फला मता है ना, जब तक प्रामाणिक संप्रदाय में नहीं है आपकी जो भजन है आपके मंत्र जप है वो सब है वो व्यर्थ है। ठीक है।
श्लोक याद मालूम है
कहाँ से है वो श्लोक? जानकीनाथ और द्वारकानाथ के श्लोक मुझे नहीं मालूम, कौन से कहाँ से है वो श्लोक? कथा में बोलते हैं। कहाँ से है? रामायण से है। रामायण से तो नहीं होगा, और दूसरे कोई ग्रंथ से होगा, कम से कम वाल्मीकि रामायण से तो नहीं है, और कहीं से होगा? ऐसे बोलते होंगे कोई पुराणों में वगैरह वगैरह, ऐसे कई कितने ग्रंथ हैं, हजारों ग्रंथ हैं, उनमें से कहीं होगा। लेकिन भाव तो हमने सार हनुमान जी का भाव क्या है वो तो पता कर लिया है ना। हनुमान जी का भाव ये है कि मेरे आराध्य, मेरे इष्ट केवल श्री रामचंद्र हैं, बस सबको नमस्कार है, लेकिन मेरा सर कहाँ है? राम के चरणों में है। हाँ, क्या प्रश्न था परीक्षित?
ऐसे नॉर्मली ज्यादातर लोग, जैसे आपने प्रश्न किया था कि स्वरूप जो बोलते हैं, वो ज्यादातर लोग जैसे गोपी का विष बना के कहते, उनसे जो संप्रदाय के बारे में पूछते हैं वो कहते हैं वल्लभी है, क्योंकि वल्लभ कुल में तो मतलब ऐसा जो पुराने थे ऐसे होते थे, पर वो तो शुद्ध थे। आगे आपके उनका लोग नाटक करते, तो कैसे उनको हम कह सकते हैं? क्योंकि वो पान खाते हैं, ये वो, और कैसे उनको हम कह सकते हैं?
मतलब जो आधुनिक काल में जो उनके आचार्य गण हैं, वो नियमों का पालन नहीं करते, यही कहना चाह रहे हैं?
नहीं, जो कुछ ज्यादातर लोग जो जिनसे आप पूछते हैं कि आप ऐसा क्यों भेष बना रखा है, तो वो बोलते हैं कि हम तो वल्लभ ही है, उनसे अगर उन संप्रदाय पूछते हैं तो।
हम वल्लभ संप्रदाय से हैं, लेकिन वल्लभ संप्रदाय में तो ऐसे कहीं बताए वो नहीं है।
क्या करते प्रभु जी, जैसे कि मैं बता दूं बच्चा वो घर में इकट्ठा होते हैं और कृष्ण की रासलीला करते हैं, फिर उसमें से एक कृष्ण बन जाता है, गोपियों को वस्त्र हरण करता है, रियल ऐसे प्राकृतिक समय जैसे बोलते ना, ऐसा होता है मेरा, उसके बारे में पूछ रहे हैं। मतलब पहले तो रियल में करते थे, मतलब वो लोग सिद्ध पुरुष थे, मगर अभी मतलब कॉपी करते हैं, खतरनाक।
कलयुग में तो ढोंग ज्यादा होता है, इसलिए हम ऐसे, और ये हमारे संप्रदाय में ऐसे बताया गया नहीं कि ऐसा सब करना है, इसलिए धीरे धीरे ऐसे लोगों देख रहे हैं कि अन्य संप्रदाय धीरे 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 से क्षीण होते जा रहे हैं। अब केवल एक संप्रदाय रहेगी, क्योंकि इसके पीछे चैतन्य महाप्रभु हैं, जो कि इस युग के लिए अवतार है, इसलिए ही आगे चल के और शक्तिशाली हो जाएगा।
हरे कृष्ण महामंत्र सारे चारों संप्रदाय के लिए है कि केवल गौड़ीय संप्रदाय का है?
वैसे ये संप्रदाय, ये किसी एक संप्रदाय का नहीं है, वो तो शास्त्रों का है, सारे विश्व के लिए है। कहाँ से है ये हरे कृष्ण महामंत्र? कौन से शास्त्र से? कली संतरण उपनिषद। इसका मतलब क्या है कली संतरण उपनिषद? कली शब्द क्या है? अलग अलग विश्लेषण की, पहला शब्द कली, संतरण उपनिषद, कली को पार कर ले जाने वाली। संतरण जैसे संकीर्तन है ना, सम्यक कीर्तन जो साथ में किया जाता है जिससे बहुत लाभ होता है, उसी तरह से संतरण जिसको तैर के हम जा सकते हैं। कलयुग तो बहुत भयानक समय है, तो इस भयानक समय को पार करके ले जाने वाला ये उपनिषद है, तो इस उपनिषद में लिखा हुआ है। तो ये तो वैदिक शास्त्र है, ये तो सारे संप्रदायों के लिए है। बिल्कुल संप्रदाय की बात तो क्या है, सारे विश्व के लिए है, परंतु चैतन्य महाप्रभु जो कि गौड़ी संप्रदाय के हैं, उन्होंने इस हरे कृष्ण महामंत्र को कली संतरण उपनिषद से निकालकर सब जगह फैलाया है, इसलिए विशेष करके गौड़ी संप्रदाय का मंत्र कहलाता है, परंतु है ये मूल तो वैदिक शास्त्रों का ही मंत्र।
तो जी, मैंने ऐसा सुना है कि वल्लभी में निमाग संप्रदाय में वो राधे कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण कृष्ण
वल्लभ ने ही, वो निम्बार्क में ऐसा करते हैं, उनका महामंत्र हरे की जगह राधे करते हैं।
तो
ये गलत तो नहीं है, परंतु हमें शास्त्रों के मंत्रों को बदलना नहीं चाहिए। जो महामंत्र है हरे कृष्ण, तो राधे कृष्ण मंत्र नहीं है वो। जो शास्त्रों में बताया हुआ, जो महाप्रभु ने बताया हुआ मंत्र है हरे कृष्ण, इसलिए हम लोग हरे कहते हैं। हाँ ये भी सही है, पहले हरे राम है फिर हरे कृष्ण है।
कुछ लोग कह रहे हैं ये भगवान चैतन्य महाप्रभु इसमें चेंज किए।
हाँ चेंज किए हैं,
महाप्रभु इसमें चेंज किए, इससे पहले महाप्रभु की पहले से महाप्रभु की गुरु जी महाप्रभु परम गुरु के माध्यम से कुछ अलग और ये संप्रदाय कुछ जप करते थे।
वो मध्व संप्रदाय से थे, उन्होंने दीक्षा मध्व संप्रदाय के लिए, लेकिन वास्तव में गौड़ीय संप्रदाय की शुरुआत माधवेंद्रपुरी से हुई जो कि चैतन्य महाप्रभु के परम गुरु हैं। तो आप चैतन्य चरितामृत पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें बताया गया है कि गौड़ीय संप्रदाय की तुलना अगर एक वृक्ष से की जाए तो वृक्ष का जो मूल क्या कहते हैं ट्रंक क्या कहते हैं तनाक, हाँ वो चैतन्य महाप्रभु हैं और जड़ हैं माधवेंद्रपुरी। तो क्यों हुआ, क्योंकि माधवेंद्रपुरी विशेष करके राधा कृष्ण के भाव में थे, वृंदावन के भाव में थे, इसके पहले मध्व संप्रदाय में कभी नहीं, मध्व संप्रदाय से अलग ही एक तरह का संप्रदाय बन गया। तो माधवेंद्रपुरी कौन से मंत्र का जप करते थे, चाहे वो हरे कृष्ण करते थे या दूसरा कोई करते थे, इसका स्पष्ट वर्णन नहीं है। हाँ जप कर रहे हैं वो भी कृष्ण नाम करते हैं, जब भी चैतन्य महाप्रभु या कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं या वृंदावन दास ठाकुर वर्णन करते हैं तो ऐसे ही कहते हैं कृष्ण नाम संकीर्तन। ऐसा तो कृष्ण नाम ही कहा गया है, लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र भी हरिदास ठाकुर जप किया करते थे और अलग कृष्ण नाम भी हो सकते हैं। केवल इतना कहा गया है माधवेंद्रपुरी के बारे में और हरिदास ठाकुर के बारे में कृष्ण नाम संकीर्तन, कि वो कृष्ण नाम संकीर्तन किया करते थे, करते थे अवश्य। अभी वो हरे कृष्ण भी करते होंगे हरे राम भी करते होंगे, लेकिन प्रभुपाद बताते हैं कि क्या फर्क है, आप जब पहले हरे कृष्ण बोलोगे फिर हरे राम बोलोगे तो फिर बोलते 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 फिर पहला कौन सा अंत में कौन सा कुछ पता नहीं होता है ना। विशेष करके चैतन्य महाप्रभु ने उसको क्यों बदला ये हमें देखना चाहिए। पहली बात यह है कि क्योंकि मूल ग्रंथ है, मूल मंत्र है हरे राम, पहले है कलिसंतरण उपनिषद में, और हरे कृष्ण महाप्रभु के समय से है या उन हरिदास ठाकुर ने भी किया होगा, भले उन्होंने हरे कृष्ण पहले किया या हरे राम पहले किया उसके लिए तो हमने कोई प्रमाण पढ़ा नहीं है। तो चैतन्य महाप्रभु के समय में हुआ क्या कि लोग कहते थे कि वेदों का मंत्र जो है वो अन्यों को नहीं बोलना चाहिए, लिखा नहीं हुआ, लेकिन वैष्णव आचार्यों ने ऐसे बताया है, प्रभुपाद जी ने कहा है, वो कहे हैं कि देखो चैतन्य महाप्रभु के समय, विशेष करके चैतन्य भागवत में जब हम पढ़ते हैं, जब चैतन्य महाप्रभु गोपी 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 कह रहे थे तो उस समय उनके कोई विद्यार्थी आए जो कि ब्राह्मण थे, वो वैष्णव नहीं थे, और उन्होंने आके कहा क्या कृष्ण का नाम लेने के बजाय आप ऐसे गोपी गोपी कह रहे हो, बड़े क्रोधित हो गए और उनका पीछा करते वो छड़ी लेकर आए और भाग गए वहां से, और उसके बाद बहुत उत्पात हो गया, सारे ब्राह्मण एकत्र हो गए कि ये क्या कर रहे हैं निमाय पंडित। फिर निमाय पंडित ने सोचा कि अब मुझे संन्यास लेना चाहिए क्योंकि संन्यास लूंगा तो लोग मेरा सम्मान करेंगे, फिर जो मैं संदेश दे रहा हूं वो स्वीकार करेंगे, तो उन्होंने संन्यास लिया। और उस समय उनको पता था कि ये ब्राह्मण लोग जो हैं, ये इतने अपने ही कठोर नियमों में बंधे हुए हैं कि वो बोलेंगे कि ये हरे कृष्ण महामंत्र है, ये जो वेदों का मंत्र है उपनिषद है, उपनिषद तो श्रुति है, तो श्रुति मंत्र केवल ब्राह्मणों को बोलना चाहिए। तो अभी उनको बदलना चाहिए। और वास्तव में क्या है, गोपी परणधन प्रभु एक बात अच्छी बात बता रहे थे कि वैसे जब भी शास्त्र में मंत्र दिए जाते हैं ना, तो उनको सही नहीं बोला जाता, उनका कुछ फेर बदल करके बोला जाता है। जैसे आप ब्रह्म संहिता पढ़िए, ब्रह्म संहिता में जब गोपाल मंत्र का वर्णन आता है, वो थोड़ा अलग मिलेगा गोपाल मंत्र, सच्चा गोपाल मंत्र नहीं मिलेगा आपको, थोड़ा बदल करके लिखना है, क्योंकि पूरा मंत्र जो है वो केवल ब्राह्मण पढ़ सकते हैं, इसलिए उसको थोड़ा बदलना चाहिए। बदल के लिखने से क्या होगा, फिर जो जानते हैं वो सही, उसको देख के वो सही मंत्र ही बोलेंगे। तो उसी प्रकार से गोपी परणधन प्रभु बता रहे थे कि वैसे है ये हरे कृष्ण, लेकिन थोड़ा बदल के बताया हुआ था, हरे चैतन्य महाप्रभु ने ठीक से उसको करके प्रचार करा दिया। नहीं भी किए होंगे तो चैतन्य महाप्रभु ने किया ना कीर्तन, किया तो उन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन। अभी देखिए दो बातें निश्चित हैं, एक कि कलिसंतरण उपनिषद में हरे राम शब्द पहले श्लोक में आता है, ये बात ठीक है। दूसरी बात है कि चैतन्य महाप्रभु ने हरे कृष्ण शुरुआत से किया महामंत्र का कीर्तन। अब चाहे वो चैतन्य महाप्रभु ने शुरू किया या माधवेंद्र पुरी ने शुरू किया या हरिदास ठाकुर ने शुरू किया, ये ज्यादा महत्व की बात नहीं है। माधवेंद्र पुरी के पद चिन्हों में चैतन्य महाप्रभु ने उसी भाव को स्वीकार किया। महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे लिए चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण हैं और वही हमारे पथ प्रदर्शक आचार्य हैं। तो उन्होंने जैसे हमें उपदेश दिया है वैसे ही उपदेश हम पालन करते हैं। तो हमारा मूल उत्तर यह है कि जबकि कलिसंतरण उपनिषद में हरे राम पहले बताया गया है, तो आप लोग हरे कृष्ण क्यों बोलते हैं? तो हमारा मूल उत्तर यही है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने कहा। बस ये हमारा उत्तर है, इससे ज्यादा हम करने जाएंगे ये ऐसे ही तर्क होगा, ऐसे प्रश्न निर्माण होंगे, किसने पहले किया, क्या किया, अब इसके उत्तर हम नहीं जानते। अभी किसने माधवेंद्रपुरी ने किया था ये नहीं किया था, इसका उल्लेख कहीं नहीं आता जहां तक हमने पढ़ा, ना भागवत में आता है, ना चैतन्य चरितामृत में आता है, ना और कोई वैष्णव इतिहास में आता है। केवल ऐसा वर्णन है कि श्री कृष्ण नाम संकीर्तन करते थे, इसलिए हमें केवल इसी बात को देखना है। हम क्यों ऐसे हरे कृष्ण पहले करते हैं? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने किया। उनके अलग अलग मंत्र हुआ करते थे, जैसे कृष्ण मंत्र उनको दीक्षा के समय मिलता था, अलग अलग मंत्र, उनके अलग अलग कई मंत्र होते हैं, लेकिन यह गोपाल मंत्र विशेष करके गौड़ी मंत्र से आता है, हालांकि पहले ब्रह्मा जी के समय से आ रहा है। वो गोपाल मंत्र, इसलिए ये महत्वपूर्ण नहीं है कि कहां से शुरू हुआ, क्योंकि इसके लिए सही प्रमाण भी नहीं मिल पाएगा। केवल आचार्यगण कह सकते हैं कि शायद हाँ महाप्रभु ने शुरू किया, लेकिन हमारे लिए इतना काफी है, महाप्रभु कृष्ण है और उन्होंने कहा हरे कृष्ण से शुरू करो, तो हम हरे कृष्ण कहते हैं। ठीक है, चेंज भी किया होगा तो क्या उसमें समस्या है? है वो कृष्ण है। सही बात है, बिल्कुल ठीक है, किए भी तो देखो। इसीलिए गोपी परणधन प्रभु का उत्तर बड़ा अच्छा है कि जब मंत्र शास्त्र में दिए जाते हैं तो वो उल्टे ही मंत्र होते हैं, क्योंकि सही मंत्र केवल ब्राह्मणों को पढ़ना चाहिए और शास्त्र तो ग्रंथ रूप में है, कोई भी उठा के पढ़ सकता है। तो उस मंत्र की सुरक्षा के लिए, उसके संरक्षण के लिए कभी कभी ऐसे उल्टा रख देते थे। तो जो जानते हैं वो जानेंगे कि वास्तव में मंत्र कैसा होना चाहिए।
प्रभु जी,
थोड़ा आगे का शब्द पे पीछे पीछे का शब्द आगे ऐसा करके कभी कर लेते हैं मंत्रों में। ये प्रथा है, एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है ये अभ्यास। सब नहीं, विशेष करके खास करके जब वेदों के मंत्रों की रक्षा के लिए किया जाता है तो ऐसे बताया। जैसे ब्रह्म संहिता का उदाहरण हमने दिया, अब पढ़िए ब्रह्म संहिता, देखिए वहां गोपाल मंत्र कैसे बताया हुआ है। तो अगर कोई अयोग्य व्यक्ति गोपाल मंत्र का उच्चारण करना चाहे तो वह पूरा मंत्र नहीं बोल पाएगा वहां पढ़ के, है ना। इसलिए बहुत अच्छी तरह से गोपी परानंद प्रभु बता रहे थे कि पहले से ही ये उल्टा है। तो सही क्या है, वो चैतन्य महाप्रभु ने अगर चेंज भी किया तो सही करके दिया। और फिर सबको क्यों दिया, क्योंकि हरिनाम सबके लिए है। हरिनाम केवल ब्राह्मणों के लिए नहीं है, सबके लिए है।
मतलब कली संतरण में उल्टा दिया था तो महाप्रभु ने उसको
सीधा कर दिया। तो चाहे महाप्रभु ने बदला हो या नहीं बदला हो, लेकिन महाप्रभु ने दिया ना, बस हमारे लिए उतना काफी है।
तो महाप्रभु पहले भी जब करते ना, हैं, हाँ
ठीक है। करते थे, विशेष करके आप चैतन्य चरितामृत में पढ़ोगे तो आप देखोगे खास करके कौन से मंत्रों का जप करते थे, हरि हराय नमः कृष्ण यादवाय नमः, ऐसे सब चीजों को पढ़ना, कृष्ण 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 हे, कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि माम, ऐसे सब मंत्रों का वर्णन आपको मिलेगा। तो ये महत्वपूर्ण नहीं है। चैतन्य महाप्रभु ने बिल्कुल है, होंगे बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें क्या विरोध क्या है, हाँ तो ऐसे ही समझा देना, कर रहे होंगे। अब इतने सारे कृष्ण मंत्र हैं और इतने महान आचार्य हुए हैं, अब इसके बारे में तो कोई प्रमाण नहीं है शास्त्र में कि अद्वैत आचार्य कौन सा मंत्र बोल रहे थे। हमारे लिए इतना ही है कि चैतन्य महाप्रभु कहते तो सभी लोग हरे कृष्ण महामंत्र ही बोलते, तो हमारा उत्तर तो यही रहेगा अगर कोई भी हमें पूछेगा तो।
अद्वैताचार्य आदि जो चैतन्य महाप्रभु के बहुत पास के गण थे तो वो जप करते थे,
बिल्कुल कर रहे होंगे, वो सब वैष्णव थे। लेकिन उनकी साधना कैसी थी क्या थी डिटेल में तो कहीं बताया नहीं हुआ है। मंगल आरती करते थे, फिर उसके बाद तुलसी पूजा करते थे कि नहीं करते थे, तुलसी पूजा करते थे, सब करते थे, लेकिन उनकी उनका कार्यक्रम दैनिक कार्यक्रम कैसे होता था इसके बारे में इतनी जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन इतना ही हमारे लिए काफी है कि वो कृष्ण नाम का जप, कृष्ण नाम का संकीर्तन ये सब किया करते थे। तो चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन है ना, हरिदास ठाकुर भी तो करते थे बैठ के, तो हमारे संप्रदाय में जितने भी हैं वो सब जप करते थे, जो बाबा जी हैं वो भी जप करते थे। ठीक है, काफी देर हो गई। वैसे हम ये पांचवा अध्याय आज आधा भी करना चाहते थे लेकिन शुरू नहीं किया, अगली बार करेंगे। पांचवा अध्याय है भक्ति की शुद्धता, ठीक है। तो आप कृपया ये पढ़ के आइएगा, ज्यादा नहीं है, एक दो तीन तीन पन्ने पढ़ के आएंगे आप। ठीक है। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री भक्ति रसामृत सिंधु की जय, श्री रूप गोस्वामी की जय।